أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى درود بھیجئے محمد بہترین نماز کیسے پڑھیں اس سلسلے کا درس نمبر 31 پچھلی بار قضا نمازوں کے احکام کو کسی حد تک مکمل کیا تھا اور اس بات کی بہت مذمت بیان ہوئی تھی کہ لوگوں کی پوری پوری زندگیوں کی نمازیں قضا ہوتی رہتی ہیں، آخر میں ایک بہت بڑا پہاڑ سا جمع ہو جاتا ہے، پھر ان عمر کے اس حصے میں جبکہ بیماریاں لاحق ہوتی ہیں اور عام ادا نماز پڑھنا مشکل ہوتی ہے، چہ جائے کہ انسان اپنی قضا نمازیں پڑھے۔ تو اس سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر شخص اپنی اولاد کو بہت بچپن ہی سے وہ یہ چیزیں سکھائے اور بہت پابندی کے ساتھ ان کو بچپن ہی سے نماز کا عادی بنا دے، تاکہ اس کے بعد چاہے مرد ہوں یا عورت، جب وہ اپنی بڑھاپے کی منزل تک پہنچے تو کسی بھی صورت نماز کو قضا کرنا ہونا تو درکنار، جو مستحبات ہیں، حتیٰ کہ دیکھیں آیت اللہ بہجت برف باری ہو رہی ہے لیکن نماز جماعت کے لیے جا رہے ہیں اس عمر میں، تو پھر یہ چیزیں کبھی بھی چھوٹتی نہیں۔ اچھا، ہم لوگ مراجع کے پاس بھی یہی نظریہ دیکھا گیا ہے لوگوں کا ان کے پاس جانے کے لیے، کہ ہمیشہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم آخرت کو حاصل کرنے کے لیے کوئی بہت مشکل سا، کوئی راکٹ سائنس ٹائپ کا کوئی حل ان کو بتایا جائے، کوئی پہنچنے کا عرفانیات کا طریقہ بتایا جائے۔ آیت اللہ بہجت کے پاس بھی اسی طریقے سے لوگ آیا کرتے تھے، تو علماء بیان کرتے ہیں کہ جب لوگ آیت اللہ بہجت سے عمل کے لیے کسی دستور کا تقاضا کرتے تھے تو آپ فرماتے تھے، آپ لوگوں نے کب شریعت کے مسلمات پہ عمل کیا ہے؟ یعنی واجب و حرام کی پابندی کریں، مثلا آپ نماز پڑھیں، مستحبات پر عمل کریں، تلاوت قرآن کریں، اور کب ایسا ہوا ہے کہ آپ نے ان چیزوں کی پابندی کی ہو اور آپ کو کوئی مطلوبہ نتیجہ نہ ملا ہو؟ کہ جو آپ ہم سے سیر و سلوک کے دستور العمل کا تقاضا کر رہے ہیں، آپ افراد کسی پیر کے منتظر ہیں جو کوہ قاف سے آ کر آپ کی رہنمائی کرے گا؟ کیا یہ تمام شارع مقدس کے احکامات آپ کے لیے کافی نہیں ہیں جو آپ کو کسی روحانی مقام تک پہنچا دیں؟ یعنی یہی نمازیں، یہی روزے، یہی تلاوت قرآن، یہی مستحبات، یہی کسی بھی شخص کو بہت بلند مقام تک پہنچا سکتے ہیں۔ الگ سے کسی ایسی چیز کا تقاضا کرنا، کوئی عجیب و غریب چیز، کوئی بہت مشکل سا عمل، اس کا لوگ سوچتے ہیں کہ شاید راہ سیر و سلوک اور عرفان پر عمل کے لیے اور کسی مقام کو حاصل کرنے کے لیے کوئی بہت عجیب سی چیز، کوئی بہت عجیب سا عمل درکار ہے۔ انہی نمازوں کی اگر صحیح طور پر حفاظت کر لی جائے، ان کو قضا ہونے سے بچایا جائے، ان کو بہترین انداز سے پڑھا جائے، ان میں خشوع خضوع کے ساتھ پڑھا جائے، ان کو افضل اوقات کے اندر انجام دیا جائے، تو یہی بہت کافی ہیں کہ ان سے بہت بڑے بڑے مقامات کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ بہت سے لوگ آ کر آغہ بہجت سے بھی کہتے تھے کہ ہمیں نماز پڑھنا اتنا دشوار ہے جیسے کوئی جرمانہ ادا کر رہے ہوں، اور واقعی نماز فجر کے وقت اکثر لوگوں کی حالت دیکھیں، کس طرح سے قہرن و جبرن جو ہے وہ اٹھتے ہیں، جاتے ہیں، اور نہ اس کے بعد کوئی تعقیبات کا کوئی سلسلہ ہوتا ہے، بس اس کے بعد بستر پہ گرے اور پھر دوبارہ خواب غفلت کے اندر چلے جاتے ہیں۔ تو پھر آغہ بہجت ایسے افراد کے لیے بتاتے تھے، یعنی صرف یہ بتانے کے لیے کہ وہ آ کے کہتے تھے اس قدر دشوار ہے جیسے کوئی جرمانہ ادا کر رہے ہیں، تو پھر سورہ انعام کی آیت نمبر 133 بتایا کرتے تھے۔ تو ان تمام چیزوں کے اوپر ظاہر ہے کہ عمل کرنا ہے۔ اکثر لوگ جو پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری نمازیں قضا ہوتی ہیں، تو ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، ایسے افراد کے لیے 7 مرتبہ سورہ مومنون کی تلاوت کا طریقہ بتایا ہے کہ اس نیت سے کہ مجھ سے کوئی نماز قضا نہ ہو، کوئی ماں بھی اپنے بیٹے کے لیے عمل کر سکتی ہے، کوئی باپ بھی کسی کے لیے کر سکتا ہے، اپنی اولاد میں سے کسی کے لیے بھی، کہ 7 مرتبہ سورہ مومنون اس نیت سے پڑھنا کہ نماز قضا نہ ہو، تو جس کے لیے بھی پڑھی جائے گی اس کے لیے اس میں ایک برکت ہے کہ اس سے پھر نماز قضا نہ ہو، اور وہ باقاعدگی کے ساتھ نماز پڑھنے لگے. تو ان تمام چیزوں پر عمل کرنا چاہیے. اور دیکھیں بہت سارے واقعات ایسے ہیں تاریخ کے اندر ملتے ہیں کہ واقعتاً ان کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے کہ جن کا اثر انسان پر ہو اور پھر وہ نمازوں کو قضا نہ کرے. جیسے کہ محدث نوری, ان کی کتاب ہے دار السلام, اس کتاب ہی سے یہ جو واقعہ ابھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, شیخ عباس قمی نے منازل الآخرہ کے اندر جو ان کی کتاب ہے اس میں اس کو نقل کیا ہے. آقا حاجی ملا علی تہرانی کا واقعہ, جو کہ خود عالم دین تھے, اور ان سے ان کے والد مرزا خلیل تہرانی نے اس واقعے کو نقل کیا تھا. ان کے والد فرماتے ہیں کہ جس وقت میں کربلا میں زیر تعلیم تھا, کربلا میں, درود بھیجئے محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, فرماتے ہیں کہ میری والدہ تو تہران میں تھی, اور ظاہر ہے کہ اس زمانہ پرانا زمانہ تھا, کمیونیکیشن کیسے ذرائع نہیں ہوتے تھے. میں نے وہیں کربلا ہی میں خواب میں دیکھا کہ میری والدہ انتقال کر گئی اور ان کا جنازہ کربلا لایا جا رہا ہے. تو اور میں نے خواب میں یہ بھی دیکھا کہ والدہ کو عذاب دیا جا رہا ہے اور ان کی ناک زخمی ہو گئی اس عذاب کے باعث. اچھا دیکھیے, خواب سمبولک ہوتے ہیں, کسی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں. میں کہہ رہے ہیں کہ ڈر کر بیدار ہوا, اور اس کے ایک دو روز بعد ہی یا چند روز بعد ہی میرے بھائی کا خط موصول ہوا کہ ہماری والدہ گرامی کا انتقال ہو گیا ہے اور جنازہ ہم تدفین کے لیے کربلا لا رہے ہیں. اچھا کچھ ہی دیر بعد کہہ رہے ہیں کہ خط بھی ظاہر ساتھ ساتھ چلا تھا, کچھ ہی دیر بعد وہاں پر جنازہ پہنچ گیا خط ملنے کے. تو جنازے والوں نے کہا کہ جنازہ ہم نے کاروان سرائے جو ہے وہاں پر رکھ دیا ہے, ذوالکفل جو ایک مقام تھا وہاں پر اس کے نزدیک, اور ہم تو یہی سمجھ رہے تھے کہ آپ نجف میں ہوں گے لیکن آپ ہمیں یہیں پر ہی مل گئے ہیں. کہہ رہے ہیں اب یہ ان کے والد فرماتے ہیں کہ میں دل دل میں سوچنے لگا کہ واقعتاً لگ یہ رہا ہے کہ یہ خواب سچا ہے اور والدہ کسی عذاب میں مبتلا ہے, اور میں بہت پریشان ہوا. بھاگا بھاگا والدہ کے جنازے کے پاس گیا, ان کے کفن ان کے چہرے سے میں نے ہٹایا تو دیکھا کہ میری والدہ کی ناک زخمی تھی. میں نے جو افراد لائے ہوئے تھے ان سے پوچھا کہ کیوں ایسا ہوا ہے, تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم کاروان سرائے میں بہت سارے جنازے لا کر رکھے جاتے ہیں, تو ان کی نماز جنازہ اور تدفین کے لیے لے جایا جاتا ہے, تو ہم نے سب سے جنازوں میں سب سے آگے لا کے اس کو رکھ دیا. تو آپس میں جو ہے جھگڑا ہونے لگا کہ ہمارا جنازہ پہلے رکھا ہوا تھا, تم نے آگے کیسے لا کے رکھ دیا. اسی دھکم پیل میں یہ جنازہ نیچے گر پڑا, شاید اس وجہ سے ان کی ناک زخمی ہو گئی ہو. ان کے والد کہتے ہیں کہ بہرحال میں اپنی والدہ گرامی کا جنازہ لے کے حرم حضرت ابو الفضل العباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام وہاں لے گیا. پرانا دور تھا, اور وہاں لے جا کر میں نے والدہ کے جنازے کو قبر حضرت ابو الفضل العباس کے بالکل برابر میں لے جا کر رکھ دیا, اور مخاطب ہو کر کہا کہ یا ابو الفضل, میری ماں نماز و روزہ صحیح طور پر انجام نہیں دیتی تھی, اکثر و بیشتر نہیں پڑھتی تھی نماز, لیکن یہ اب آپ کے حوالے ہے, اس پر سے عذاب اور تکلیف کو معاف فرما دیں. میں آپ کے سامنے اپنی ماں کی 50 سال کی قضا نمازیں اور روزے ادا کرنے کی ضمانت لیتا ہوں, شاید اس طرح سے اس کا عذاب ختم ہو جائے. بس اب آپ کی ذمہ داری ہے, آپ میری ماں کا عذاب ختم کروائیں. کہہ رہے ہیں بہرحال اس کے بعد ماں کے جنازے کو لے گئے اور دفن وغیرہ کر دیا. کچھ عرصے تک تو میں والدہ کی نمازیں پڑھتا رہا اور کچھ روزے بھی رکھے, لیکن کچھ ایسا مصروفیات میں الجھ گیا کہ اس کے بعد میرے دماغ سے نکل گیا اور میں نے والدہ کی قضا نمازیں روزے انجام دینا بند کر دی. کچھ عرصے کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دوبارہ دیکھا کہ میرے گھر کے دروازے کے باہر بہت شدید شور و غوغا ہو رہا ہے. میں پریشان ہو کر, خواب میں ہی دیکھ رہے ہیں کہ میں پریشان ہو کر باہر نکلا, تو میں نے دیکھا کہ میری ماں کو ایک درخت سے باندھ کر عذابی کوڑے مارے جا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں میں تڑپ گیا, پوچھا کہ ایسا کیوں ہے, تو کوڑے مارنے والوں نے کہا کہ حضرت ابو الفضل العباس نے ہمیں اس کام پر مامور کیا، جب تک اتنی رقم ادا نہیں کر دی جائے گی۔ دیکھیں پھر کہوں دوبارہ روک کے کہ خواب سمبولک ہوتے ہیں، کچھ بات بتانے کے لیے ہوتے ہیں، بے عین ہی ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہوتا ہو۔ کہا کہ جب تک یہ اتنی رقم ادا نہیں کر دے گی تب پر سے اس پر یہی عذاب ہوتا رہے گا۔ کہہ رہے ہیں میں بھاگا بھاگا اپنے گھر کے اندر داخل ہوا اور جس قدر بھی وہ رقم مانگی تھی خواب میں وہ میں نے خواب ہی میں ان لوگوں کو لے جا کر ادا کی اور والدہ کو عذاب سے نجات دلوائی، اور اس کے بعد دوبارہ سے ان کی میں خدمت میں مشغول ہوا۔ پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں جب میں خواب سے بیدار ہوا تو میں بھاگا بھاگا جہاں رقم رکھی ہوئی تھی اس میں آ کر حساب کیا تو جو رقم ان لوگوں نے وصول کی تھی وہ اتنی ہی رقم تھی جو 50 سال کی نماز و روزہ کے برابر بنتی تھی۔ تو اس کے بعد کہنے میں نے وہ رقم اٹھائی اپنے پاس سے اور آغا مرزا سید علی جو صاحب کتاب ریاض جو تھے میں ان کے پاس لے کر آیا اور کہا کہ یہ رقم میری والدہ کی 50 سال کی نماز و روزہ کے اجارے کے لیے ہے، اس کو آپ ادا کروا دیں۔ یعنی آپ نے دیکھا کہ پورا واقعہ کہ انسان کو حقیقتاً یہ ہے کہ کتنا ہی اس کی اولاد بھی چاہے وہ عالم دین کیوں نہ ہو جائے، کوئی بھی شخص جو اپنے آپ سے سنسیئر نہیں ہے دوسرا کبھی بھی اس سے اتنی سنسیئرٹی اور خلوص کا مظاہرہ نہیں کر سکتا، بہت ہی کم شاذ و نادر ایسے افراد ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا کوشش یہ کریں کہ انسان خود سے اپنی تمام نمازیں جو قضا اس نے کی خود سے پڑھ کر جائے، اس میں نہ رہے، اس خیال میں نہ رہے کہ میری اتنی اولاد ہے، اتنی تابے دار ہے، اتنی غم گسار ہے، اتنی زیادہ محبت کرنے والی ہے، بات بات پہ جو ہے اتنا خیال کرنے والی، یقیناً یہ لوگ سب سنبھال لیں گے اور بعد میں میری نماز و روزہ ادا کرواتے رہیں۔ کیونکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کتنے افراد کے جو کہ بے ہوش ہوئے جا رہے ہوتے ہیں اپنے والد اور والدہ کے انتقال کے اوپر، اور اس کے بعد ایک ہفتے کے اندر اندر کبھی کبھار وہ آتے ہیں اور ایک سال کی مشکل سے نماز و روزہ کا کرواتے ہیں، اس کے بعد چاہے 60-70 سال کی نمازیں کیوں نہ ہوں اس کے بعد دوبارہ کبھی ہم دوبارہ آتے نہیں دیکھتے، زندگی کے جھمیلوں میں کھو جاتے ہیں اور اس کے بعد بھول بھال جاتے ہیں، بہت ساری اس کی وجوہات ہوتی ہیں لیکن ہوتا ایسا ہی۔ تو سب سے بہتر یہ کہ انسان اپنی قضا نمازیں خود ادا کر کے جائے۔ تو اچھا اگر کوئی شخص خود ادا نہ کر سکے اور مثلاً اتنا مال رکھتا ہو تو وہ وصیت کر کے جائے، اگر لواحقین سارے اس کے تیار ہو جائیں گے کہ بعد میں اس کی میراث کے مال سے قضا نمازیں اور قضا روزے اجارے کے اوپر ادا کروائے جائیں تو وہ ظاہر ہے کیونکہ سب راضی ہیں تو مکمل اس کے ادا کروائے جا سکتے ہیں مال سے، اور لواحقین کو اگر اعتراض ہوا تو پھر وصیت کی بنا پر مال کے ایک تہائی حصے میں سے وہ نماز اور روزے ادا کیے جائیں گے، مال کے ایک تہائی میں سے۔ اچھا اگر کسی کے پاس اتنا مال بھی نہیں ہے تو پھر کم سے کم وہ کسی ایسے فرد سے وصیت کر دے کہ جس کو امید ہو کہ یہ شخص بعد میں تبرعاً ثواب کی نیت سے میرے نماز و روزے کو ادا کروا دے گا۔ لیکن اگر مرحوم کی وصیت بھی نہیں ہے اور ورثا وغیرہ بھی اس کے اوپر اس لحاظ سے تیار نہیں ہیں تو پھر اس کے مال میں سے، میراث میں سے نماز و روزے کے لیے ایک پیسہ بھی نہیں لیا جا سکتا۔ تو بہرحال اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کیوں نہیں لیا جا سکتا، اس لیے کہ صرف مالی واجبات میراث سے لیے جا سکتے ہیں۔ بس مالی واجبات میں کون سی چیز آتی ہے؟ مثلا قرضے آتے ہیں، یعنی مرحوم نے کسی سے قرضہ لیا ہوا تھا تو اس کی میراث میں سے قرضے ادا ہوں گے پھر میراث تقسیم ہوگی۔ مثلا حج آتا ہے، حج مالی واجب ہے، حج واجب ہو چکا تھا، حج پہ نہیں گیا تھا وہ شخص، تو اب پہلے حج کا خرچہ نکالا جائے گا پھر جو کچھ بچے گا وہ ورثہ میں تقسیم ہوگا۔ لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی جسمانی عبادات ہیں جیسے نمازیں ہیں، جیسے روزے ہیں، جسمانی عبادات، ان کی اجرت میراث سے نہیں لی جا سکتی۔ ہاں وصیت وغیرہ اگر ہو تو ایک الگ بات ہے۔ تو اس کا خیال رکھنا چاہیے، بہت تیز آواز ہوگی، تھوڑا کم کیجیے۔ تو جسمانی عبادات کی اجرت میراث سے نہیں لی جا سکتی، اور جو اچھا ایک بحث اس کے اندر آتی ہے کفارات کی، آواز ابھی بھی بہت تیز ہے، कफारात की एक बहस आती है कि जो रोजे के कफारे हैं ये किसके जिम्मे होंगे। तो बहरहाल कफारे वगैरह जो हैं ये किसकी एक अलग बहस है, फिलहाल इसके अंदर नहीं जा रहे हैं। तो बहरहाल जिस्मानी इबादत की जो उजरत है जैसे नमाज और रोजा है, ये मरहूम के माल से नहीं ली जा सकती सिवाय कि वो वसीयत करके गया हो। अच्छा, अब एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या मरहूम माँ और मरहूम बाप जो है दोनों की कजा नमाजें और रोजे ये अदा करवाने वाजिब होते हैं। अभी तो सबसे पहला मरहला यही आता है कि वाजिब है किसके ऊपर। तो ज्यादातर, हाँ पहले ये बात बता दी जाए कि अक्सर लोग ये समझते हैं कि शायद मरहूम के सिर्फ कजा नमाजों का ये वाला मसला है। कजा ना जब वाजिब होते हैं, जिसके ऊपर भी वाजिब होते हैं तो भी आगे चलकर आएगा, उसको नमाजें और रोजे दोनों का मसला बिल्कुल एक साथ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नमाजों का मसला हो रोजों का मसला ना हो। बाज जगहों के ऊपर, क्योंकि उलमा ने ये लिखा है बहुत सी अपने मुफस्सिल किताबों वगैरह में भी, और बस ये कह के आगे बढ़ गए कि जो नमाजों के जो मसले सारे बयान हुए यही बिल्कुल बयान है रोजे के भी, तो अलग से बार बार उसका तस्करा नहीं किया। चंद एक जगहों पर छोटा सा एक इख्तलाफ है, वो आगे चलकर अभी आ जाएगा। तो बहरहाल नमाजों के साथ रोजे भी शामिल है। खुद ब खुद जहां लफ्ज नमाज आए उसमें आप रोजा खुद ही ऐड कर लीजिए क्योंकि दोनों ही शामिल हैं। फिर कौन पढ़ेगा, ये वाजिब किसके ऊपर है? तो इसमें उलमा का एक इख्तलाफ है। ज्यादातर मराजे तो ये कहते हैं कि बाप की कजा नमाज और रोजे वाजिब होते हैं। क्या मां की कजा नमाज और रोजे भी वाजिब होते हैं किसी पर? तो इस सिलसिले में ये मसला है कि आयतुल्लाह खोई, इमाम खुमैनी और आगा सिस्तानी वगैरह ये कहते हैं कि माँ की कजा नमाज और रोजे ये बड़े बेटे पर वाजिब नहीं होते। अलबत्ता रहबर मौजम आयतुल्ला खामेनेई के फतवे में वाजिब है। आयतुल्ला इसहाक फयाज, उनका नाम अगरचे नहीं लिखा हुआ लेकिन वो भी इसके कायल हैं। और ऐसा नहीं है बल्कि और मराजे भी ऐसे हैं कि जो इस नजरिए कायल हों कि माँ की कजा नमाजें और रोजे भी बड़े बेटे के ऊपर वाजिब होते हैं। तो ये दिमाग में रहे। लेकिन बहरहाल अभी जिनकी ज्यादा तकलीद हो रही है तो उन्हीं के हमने यहां पर लिख दी हैं कि तीन इनमें से मराजे ऐसे हैं कि जो कि माँ की कजा नमाजों को बड़े बेटे पर वाजिब नहीं समझते। अच्छा, तो ये एक मसला बिल्कुल वाज है, इसको आप नोट कर लें तो, क्योंकि ये मसला काफी पेश आने वाला है। अच्छा, अलबत्ता ऐसा भी नहीं है कि माँ की कजा नमाजें और रोजे वाजिब तो नहीं है, लेकिन बहरहाल ये उलमा जो इस बात का कहते हैं कि वाजिब नहीं, वो भी कहते हैं कि एहतियात मुस्तहब ये है कि माँ की कजा और नमाजें और रोजे भी अदा करवाए जाए। वाजिब तो नहीं है लेकिन एहतियात मुस्तहब ये, या तो बड़ा बेटा खुद अदा करे माँ की कजा नमाजें और रोजे एहतियात मुस्तहब के तौर पर, या तो बड़ा बेटा खुद अदा करे या उसके लिए कोई अजीर मुकर्रर करे। लेकिन बहरहाल है ऐसा ही नजरिया कि माँ की कजा नमाजें और रोजे सिवाय आयतुल्ला खामनेई की, आयतुल्ला इसहाक फयाज के, ये एक आध और भी उलमा है लेकिन वो फिर मिक्सअप हो जाएगा, इस वजह से मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूं। तो वो ये कहते हैं कि वाजिब नहीं है। दीगर उलमा जैसे आगा सिस्तानी वगैरह, लेकिन रहबर मौज़ा और इसहाक़ फ़य्याज़ के नज़दीक वाजिब है। अच्छा, फिर एक सवाल यहां पर फौरन ये होता है, और खास तौर पर माएं या ख़वातीन पूछती हैं कि माँ की कजा नमाजें क्यों वाजिब नहीं है, यानी सिर्फ बाप के लिए ऐसा क्यों है? अगरचे रिवायात में वाज़े तौर पर तो ये बात नहीं बयान की गई, लेकिन ऐसे ये ख्याल आता है बाज़ औक़ात कि तबई तौर पर एक किसी भी शख्स के दिल में मां से निस्बतन मोहब्बत ज्यादा होती है, बाप से इतनी नहीं होती। तो बाप की कजा नमाजें और रोजे तो एक लिहाज से डंडे के जोर पर शरीयत ने वाजिब की, मालूम था कि तुम हरगिज ना पढ़ते अगर तुम पर ये वाजिब ना की जाती। और बहरहाल मां की कजा औलाद के लिए उसकी मां से मोहब्बत का एक इम्तिहान है, ये बाज़े उलमा से हमने सुना। वाजिब नहीं करार दिया, सिर्फ एहतियात मुस्ताहब लगाई। अब देखें कौन है जो वाकईतन अपनी माँ के एहसानात का बदला बरज़ा और रग़बत के साथ और खुशी के साथ वाजिब न होने के बावजूद वो अंजाम देता है। तो बहरहाल अब मराजी की खैर एक बड़ी तादाद तो इस बात को नहीं मानती है, यानी वो कहती है कि वाजिब नहीं है, सिर्फ बड़े बेटे के ऊपर ही वाजिब है। अच्छा, फिर एक सवाल और होता है कि क्या बेटियों पर भी कभी कजा नमाज और रोजा वाजिब होता है? तो इस वक्त तकरीबन सारे ही मुज्तहिदीन ये कहते हैं कि बेटियों पर ये वाला वाजिब नहीं आता है, बेटियों पर। अलबत्ता एक मरहूम गुजरे हैं मर्जे, और कुछ मराजे और भी हैं जो ये कहते हैं कि बहरहाल अगर बड़ा बेटा ना हो या बड़े बेटे सारे इंतकाल कर जाएं और सिर्फ अब बेटियां मौजूद हो तो इनके ऊपर ये आ जाता है हुक्म। लेकिन ये मौजूदा जो जिनकी तकलीद हो रही है उनमें से किसी का भी मसला नहीं। तो अगर सिर्फ बेटियां भी मौजूद हो तो वाजिब किसी के ऊपर, किसी भी बेटी के ऊपर नहीं होगा। अच्छा, अब एक मसला यह है कि बाप की कजा नमाजें और रोजा 6 शराइत पूरे होने पर वाजिब होती हैं। ये देखिए, मसला यह है कि हर शख्स को घर के अंदर, हर घर का तकरीबन ये मसला बन जाता है। अगर किसी भी घर में बाप का इंतकाल होता है, किसी घर में मसलन दादा का इंतकाल होता है, तो उसके अपने बेटे यानी किसी के बाप के ऊपर ये नमाजें आ जाती हैं। तो ये वाले मसले भी पता होने चाहिए। तो 6 शर्तें पूरी होने के ऊपर बाप की कजा नमाजें और रोजे ये वाजिब होते हैं। अच्छा, इनमें वो उलमा भी आ जाएंगे कि जो कि माँ की कजा नमाजों को वाजिब समझते हैं बड़े बेटे पर, तो वो उनको खुद ब खुद ही आप ऐड कर लीजिएगा कि ये शर्तें पूरी होंगी तो वाजिब होंगी, और ये शर्तें अगर पूरी नहीं हुई 6, तो फिर बड़े बेटे पर या किसी और पर वो नमाजें वाजिब नहीं होंगी। तो ख्वाह बाप हो या ख्वाह माँ हो, जिनकी भी पढ़ी जा रही है। सर, पहली शर्त तो ये है कि बाप ने किसी उजर की बिना पर नमाज और रोजों को कजा किया। मसलन बाज़ोकात होता है कि बाप भूल गया था, सोता रह गया था, कोई ऐसी बीमारी उसके साथ हो गई थी, उजर शरई उसके साथ हुआ था। यानी ऐसा नहीं है कि बाप ने नाफरमानी करते हुए, यहां पर खुद एक मसला ये आ जाएगा कि बाप ने अगर बिला उजर नमाजें छोड़ी थी और नाफरमानी करते हुए कजा की थी। बहुत से लोग आते हैं 80-80 साल, 90-90 साल के जो है वो नमाजें और रोजे कह रहे हैं, वालिद मोहतरम ने पढ़ी नहीं, 90 साल की उम्र में इंतकाल हुआ है। और जब उनको बताया जाता है कि भाई 90 साल के मसलन सालाना इतने जो लोग नमाजें पढ़ते हैं वो इतने पैसे लेते हैं और ये इतने आपके बनेंगे, तो उसके बाद 1 साल के बमुश्किल पैसे जो है वो दे के चले जाते हैं, फिर वापस कभी नहीं आते। तो बहरहाल ये जैसे एक साहब कह भी रहे थे कि जब ये मसाइल वगैरह उन्होंने पढ़े तो अपने बाप वालिद साहब उनके नमाज नहीं पढ़ते, जाके कहा कि वालिद साहब अपनी नमाजें खुदा के लिए खुद पढ़ के जाएं, हमारे लिए अपनी नमाजें पढ़ना मुश्किल है, चले जाएगा कि आपकी नमाजें भी हमको पढ़ना पड़े या पढ़वानी पड़े बाद में बड़े बेटे के ऊपर। तो वाजिब हो जाता है, तो खुद पढ़ो या पैसे दे के पढ़वाओ। अभी 80-90 साल के पैसे जो है वो अगर लगाए जाए तो लाखों के अंदर बनते। तो बहरहाल एक तो ये है कि बाप ने अगर उजर की बिना पर छोड़ी हैं नमाजें, बीमार हो गया था, कोई और शरई उजर था, उसकी बिना पर कजा की है, सिर्फ उनकी कजा करना है। लेकिन यहां पर एक मसला यह आता है कि अगर बाप ने नाफरमानी करते हुए, सरकशी करते हुए, लापरवाही करते हुए नमाजों को कजा किया है, तो यहां पर उलमा में एक इख्तलाफ है कि उस नमाजों की कजा करनी होगी या नहीं। तो नाफरमानी करते हुए अगर ये दोनों चीजें कजा की हैं तो आगा सिस्तानी और आयतुल्ला खामेना ये फरमाते हैं कि उनकी कजा बड़े बेटे पे वाजिब नहीं। और इमाम खुमैनी और आयतुल्ला खुद ये फरमाते थे कि एहतियात वाजिब यह है कि उन नमाजों की भी कजा अंजाम दी जाए। अच्छा, यहां पर बहरहाल आगे खोई वालों के लिए भी और इमाम खुमैनी वालों के लिए भी, वो अगर कोशिश करें तो उसके अंदर रुजू वगैरह का एक पहलू निकल सकता है उनके लिए, कि उनके ऊपर भी ये वाजिब के तौर पर ना रहे, फिर कोई अदा करवाना चाहे तो कम से कम वाजिब उसके ऊपर से हट जाए अगर वो रुजू कर ले। लेकिन आगा सिस्तानी और आयतुल्ला खामनाई तो वैसे भी खुद भी ये बात फरमाते हैं कि वाजिब नहीं है अगर उसने नाफरमानी करते हुए, सरकशी करते हुए, बगावत करते हुए, लापरवाही से काम लेते हुए, बस पढ़ता ही नहीं था, बिल्कुल नजरअंदाज की हुई थी नमाजें, जिसे कहा जाए नाफरमानी करते हुए, तो उन नमाजों की कजा वाजिब नहीं। अच्छा, ये हो गया एक। अच्छा, अब इसके अंदर एक बात ये भी है कि हाँ, अलबत्त ये बात जरूर बता दी जाए इसके अंदर, ये जो पहली शर्त थी कि वाजिब तो नहीं है लेकिन फिर भी एहतियात मुस्तहब ये है कि ये उनकी कजा करवा दे। यानी वो उलमा जो कहते हैं वाजिब नहीं है, वो भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल जैसे ताकीद कर रहे हो कि नहीं हरगिज मत पढ़ना, नहीं, रिकमेंड करते हैं कि बहरहाल एक हक है, एक उसके लिए एक मोहब्बत का एक जो गोशा हर शख्स के दिल में होता है, बहरहाल उसके लिए मुस्तहब ये है कि वो उनको भी पढ़वा दे, लेकिन बहरहाल वाजिब नहीं है अगर नाफरमानी करते हुए उसने पढ़ी। तो पहली एक तो शर्त ये हो गई। दूसरी शर्त ये है कि बाप ने अपनी जिंदगी में तवानाई रखते हुए नमाजों को कजा किया, यानी उसके अंदर तवानाई मौजूद थी। उलमा इसकी एक मिसाल देते हैं, मसलन बाप की नमाज फजर कजा हुई और तुलू आफ्ताब हो गया और उसी नींद की हालत में मसलन उसको दिल का दौरा पड़ा और इंतकाल कर गया। अब उसके अंदर तवानाई ही नहीं थी इस बात की कि वो उस नमाज को पढ़ सकता, तो ऐसी इस तरह की नमाजों की कजा उसके ऊपर वाजिब नहीं होती। यानी बाप ने अपनी जिंदगी में तवानाई रखते हुए नमाजों को कजा किया हो, यानी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो उस पर वाजिब ही नहीं हो पाई, यानी बाप नींद की हालत में था, नींद की हालत ही में मसलन इस तरह से इंतकाल कर गया। इसी तरीके से एक तीसरी शर्त इसमें यह है कि बाप ने कजा नमाज और रोजे के लिए किसी को अजीर बनाने की वसीयत ना की हो। मसलन ये कि अगर उसने अजीर बनाने की वसीयत कर दी थी बाप ने और उसकी वसीयत नाफिज भी हो, अब ये एक अलग मसले होते हैं कि वसीयत कब नाफिज है कब नाफिज नहीं है। बहरहाल अगर उसने अजीर बनाने की वसीयत कर दी और वसीयत नाफिज भी हो सकती हो उसकी, तो फिर बड़े बेटे के ऊपर वाजिब नहीं होगा, क्योंकि वो तो वसीयत कर गया है, उसके लिए मसलन रकम भी मौजूद है और बस उसको पढ़वानी है। जब वो कोई दूसरा शख्स के ऊपर वाजिब है हो गया है एक लिहाज से कि वो अजीर उस बना दिया गया बाप के पैसों के ऊपर, बाप मसलन वसीयत करके गया था और वो अजीर बना दिया गया, तो अब बड़े बेटे को क्यों पढ़नी होगी, वो तो नमाज दूसरा शख्स अदा कर देगा उसकी जगह पर। तो ये उस वक्त है कि जब बाप ने कजा नमाज और रोजे के लिए अजीर बनाने की वसीयत ना की हो, तब फिर बड़े बेटे के ऊपर आती है। लेकिन बाप ने अगर अजीर बना के वसीयत करके गया, वसीयत नाफिज भी हो रही है उसकी, तो फिर उस सूरत में बड़े बेटे के ऊपर कजा वाजिब नहीं होगी। तो वो तो जैसे कि अभी आपने सुना कि अगर अजीर मुकर्रर कर गया है, वसीयत उसकी नाफिज है, वरासा उसके सब तैयार हैं और वरासा में से अगर कोई गड़बड़ कर रहा है मसलन, तो फिर एक तिहाई माल के अंदर जितनी भी नमाजें अदा हो सकती हैं वो अदा करवाई जाएंगी, और अगर एक तिहाई माल से माल कम पड़ गया, नमाजें ज्यादा कजा हैं, तो फिर वो बड़े बेटे के ऊपर आ जाएंगी नमाजें। इस तरह से चौथी शर्त ये है इसमें कि बड़ा बेटा बाप के इंतकाल के वक्त पागल या नाबालिग ना हो। अगर वो बाप के इंतकाल के वक्त पागल या नाबालिग था, अच्छा इसमें भी आयतुल्ला जैसे मराजे में थोड़ा सा इख्तलाफ है। आयतुल्ला सिस्तानी यानी बड़ा बेटा जो है वो नाबालिग था बाप का जिस वक्त इंतकाल हुआ, वो फरमाते हैं कि जब ये नाबालिग बालिग हो जाएगा तब इसके ऊपर बाप की कजा नमाज और रोजे पूरे करने वाजिब नहीं होंगे। यानी उस मौके पर अगर ये बड़ा बेटा बालिग है तो इसके ऊपर कजा नमाज और रोजे आएंगे, लेकिन ये अगर बड़ा बेटा जो है ये बाप की मौत के वक्त नाबालिग था या मसलन पागल था, तो पागल था लेकिन बाद में ठीक हो गया, तो ठीक होने के बाद इस पर नमाज और रोजे की कजा वाजिब नहीं होगी। लेकिन बहुत से मराजे और हैं जैसे आयतुल्ला कोई, वो फरमाते थे कि उस जब ठीक होगा या बालिग हो जाएगा उस मौके पर उसके ऊपर कुछ उलमा ये कहते हैं, कुछ मराजे ये कहते हैं कि वाजिब हो जाती, लेकिन आगा सिस्तानी इसके कायल नहीं। रहबर मौजम का मसला इस सिलसिले में मुझे पता नहीं चल सका, उनके इस्तफ्तात में भी देखा लेकिन ये नहीं था कि नाबालिग अगर है और फिर बालिग हो जाए तो उसकी क्या जिम्मेदारी होगी। इसी तरीके से मसलन पागल था बाद में आकिल हो गया, जैसे कि हमारे उस्ताद मोहतरम बयान करते थे कि पागल था तो उसके ऊपर बाप की कजा नमाजें नहीं थी, आका कोई का मुकल्लिद है मसलन वो, और उसके बाद जब वो पागल से आकिल हुआ तो उस पर फिर नमाजें आ गईं, लेकिन जैसे उसको पता चला कि बाप की 80 साल की नमाजें पढ़नी हो फिर दोबारा पागल अगर हो गया सुनकर, तो बहरहाल फिर उसके ऊपर कजा वाजिब नहीं होगी। लेकिन बहरहाल आगा सिस्तानी तो फरमाते हैं कि बाप की मौत के वक्त अगर वो नाबालिग और पागल था तो चाहे बाद में बालिग हो जाए और चाहे बाद में आकिल ही क्यों ना हो जाए, जो अगर पागल था तो इसके ऊपर बाद में बाप की कजा नमाजें वाजिब नहीं होती। अच्छा फिर पांचवी शर्त यह है कि बड़ा बेटा मीरास मिलने से शरण मना ना किया गया हो, क्योंकि उलमा फरमाते हैं कि तीन चीजें ऐसी हैं कि जो कि हक के मीरास को खत्म कर देती हैं। उनमें एक तो है कत्ल, मीरास को रोक देता है, लेकिन किसी सब किसी का कत्ल नहीं। मसलन बेटा ही अपने बाप को कत्ल कर दे, यानी अगर बेटा अपने बाप को कत्ल कर दे और उसके बाद कहे कि भाई मैं जो हूं वो रसा में हूं, मुझे मेरा मसलन बाप जो है अरबपति है, मसलन करोड़पति है, बेटे ने सोचा कि मैं कुछ अफराद से साजबाज करके अपने आप को सजा वगैरह से बचा लूंगा, बाप को कत्ल कर दिया, बाद में मीरास लेने पहुंच गया। नहीं, इस्लाम हुक्म देता है कि नहीं, जो कातिल बेटे को मीरास नहीं मिलती, यानी कत्ल जो है वो मीरास को रोक देता है अगर उसने अपने बाप को कत्ल किया। अच्छा, क्योंकि इसको मीरास नहीं मिलेगी तो इस वजह से इसके ऊपर बाप की कजा नमाजें और रोजे भी वाजिब नहीं होंगे। अलबत्ता इसमें बहुत से उलमा के इख्तलाफ है जो अभी आगे चलकर आएगा। इसी तरीके से गुलामी और कनीजी, कोई गुलाम या कनीज हो तो उसके ऊपर भी ये वाला मसला नहीं आता है, लेकिन ये इतना मसला नहीं पेश आता है, इस वजह से इसको छोड़ते हैं। और तीसरी चीज ये है कुफुर, ये भी मीरास को खत्म कर देता है, यानी बड़ा बेटा अगर काफिर हो जाए तो अब कुफुर की वजह से इसको मीरास नहीं मिलेगी, और इसी बिना पर इसको इस पर कजा नमाजें और रोजे वाजिब भी नहीं होंगे। अलबत्ता कुछ उलमा ने इसके अंदर भी एहतियात वाजिब लगाई, जैसे आगा खोई, वो कहते हैं बड़ा बेटा अगर अच्छा, बल्कि नहीं, अब इसको आगे के लिए रखता हूं कि जहां पर ये इख्तलाफ आएगा। तो ये पांच चीजें हैं कि बड़ा बेटा मीरास मिलने से मना ना कर दिया गया हो, क्योंकि अगर मना कर दिया गया है वो तो फिर तो बड़े बेटे पर नमाज और रोजा की कजा करना वाजिब नहीं होती, जो उस वक्त वाजिब होंगे कि जब उसको मीरास भी मिल रही हो। छठी शर्त यह है कि मालूम हो कि बड़ा बेटा कौन है। लोग कहेंगे कि भाई ये इसमें कौन सी मुसीबत वाली बात है, मालूम होता है कि बड़ा बेटा कौन है। नहीं, बहुत से ऐसे होते हैं कि मसलन जुड़वा बेटों की जो है पैदाइश हुई थी, और अब काफी आगे चलकर जब ये मसला पेश आ रहा है, अब लोगों को पता नहीं चल रहा है कि इसमें बड़ा कौन सा है, कौन सा पहले पैदा हुआ था, कौन सा बाद में पैदा हुआ था। यानी ये बिल्कुल वाजे तौर पर मालूम होना चाहिए कि बड़ा बेटा कौन है, जो भी बड़ा बेटा होगा उसके ऊपर वाजिब होगी। अगर मालूम ना हो कि बड़ा बेटा कौन सा है इनमें से, तो किसी पर भी वाजिब नहीं होगी। अलबत्ता उलमा उसमें कहते हैं कि एहतियात मुस्तहब ये है कि वो दोनों जिनके मुतालिक इम्कान है कि इनमें से बड़ा कौन है, ये दोनों नमाजों को तकसीम कर लें अपने, और अगर तकसीम पे राजी ना हो तो ये कुरा भी डाल सकते हैं। मसलन कुरा अंदाजी कर लें कि जिसका मसलन उठाया, जिसका नाम निकल आया वो नमाजें पढ़ेगा, लेकिन वाजिब इनमें से किसी के ऊपर भी नहीं, जब पता ना हो कि बड़ा बेटा कौन है। अच्छा, अब शरीयत के अंदर एक और बहस आती है कि बड़ा बेटा कौन होता है। तो कहेंगे भाई ये कौन सी बहसें आ रही हैं, सबको पता है कि भाई बड़ा बेटा कौन सा है। तो देखिए, बड़ा बेटा शरीयत में उसको कहा जाता है कि जो बाप की मौत के वक्त बड़ा बेटा होता है। मसलन किसी शख्स के दो बेटे हैं, चार बेटे हैं, मसलन जो वाकयतन बड़ा बेटा था वो बाप की जिंदगी में इंतकाल कर गया, अब छोटा बेटा मौजूद है बाप के इंतकाल के वक्त। अब हो सकता है बेटियां भी हों, और ये बेटा हो सकता है कि तमाम मसलन पांच बेटियां थीं, दो बेटे थे, एक बेटा जो बड़ा बेटा था वो बाप की जिंदगी में इंतकाल कर गया, उसके बाद ये पांच बेटियां हैं, उनके बाद ये बेटा है, तब भी ये बेटा बड़ा बेटा ही समझा जाएगा, क्योंकि ये बाप की इंतकाल के वक्त बड़ा बेटा है, क्योंकि जो असल बड़ा बेटा था वो बाप की जिंदगी में इंतकाल कर गया, उसको तो एक तरफ से माइनस कर दीजिए, अब उसको बड़ा बेटा नहीं समझा जाएगा। बाप की मौत के वक्त बेटों में जो सबसे बड़ा बेटा हो, चाहे उससे बड़ी बेटियां ही क्यों ना मौजूद हों, वो ही बड़ा बेटा बन जाएगा और उसके ऊपर नमाज और रोजा आ जाएगा। तो ये हुआ कि जो बाप की मौत के वक्त बड़ा बेटा हो। अच्छा, एक इसमें मसला और भी आता है कि बड़े बेटे से कौन मुराद होती, जो पहले बाले हो गया हो या जो उम्र के एतबार से बड़ा हो। ये खुद उलमा के अंदर एक बड़ी दिलचस्प बहस है। मसलन हो सकता है कि जिसकी उम्र छोटी है वो पहले बालिग हो जाए, और जिसकी उम्र ज्यादा है हो सकता है वो अभी बालिग ना हुआ हो। बहुत सिर्फ और सिर्फ उम्र से ही तो बुलूग नहीं आता है ना, बहुत सी और अलामतें बुलूग भी हैं। तो हो सकता है कि जो छोटा बेटा है ये पहले बालिग हो गया, पहले बालिग हो गया तो इस पर नमाज और रोजा वाजिब हो गया। तो जब इस पर अपनी नमाज रोजा वाजिब है तो दिमाग में ख्याल ये आता है कि फिर ये बालिग भी पहले हो गया है, तो क्या इसी को ही तो बाप की कजा नमाजें और रोजे नहीं अंजाम देना है? क्योंकि जो असलन उम्र के अंदर बड़ा है वो भी बालिग नहीं हुआ, उस पर तो अपनी नमाजें पूरी पढ़ना वाजिब नहीं हुई हैं, चाहे जाएगा कि अपने बाप की नमाजें इसके ऊपर आए। तो उलमा और शरीयत ने बहरहाल ये बात बताई है कि बड़े बेटे से मुराद वो है जो उम्र में बड़ा हो, बुलूग से इसका ताल्लुक नहीं। यानी इसके अंदर जो मेयार है वो उम्र में बड़ा होना है, बालिग होना मेयार नहीं। वलद अकबर हाला मौत अभी, यानी बाप के इंतकाल के वक्त बेटों में जो सबसे बड़ा हो तो उसके ऊपर कजा नमाजें और रोजे पूरे करने वाजिब होते हैं। अच्छा, अगर किसी के मसलन बेटे ना हो, सिर्फ और सिर्फ बेटियां हो, तो चाहे कोई बेटा नहीं भी है तब भी किसी बेटी के ऊपर बाप की कजा नमाजें और रोजे वाजिब नहीं होंगे। अच्छा, इसी तरह से जो बड़ा बेटा है अगर वो बाप की जिंदगी मर गया, जो दूसरा है वो छोटा है, अब वो ये नहीं सोच सकता कि मैं बड़ा कब हूं, मैं तो छोटा हूं। बड़ा तो मेरा मरहूम भाई था और उसके बाद चार पांच बहनें भी मुझसे बड़ी हैं, तो मुझ पर नमाज क्यों वाजिब हो? तो शरीयत ने कहा नहीं, क्योंकि बाप की मौत के वक्त तुम सबसे बड़े थे बेटों में, इस वजह से तुम पर ये नमाज और रोजे आ जाएंगे, चाहे तुम अपने उस मरहूम भाई से उम्र में छोटे हो, चाहे तुमसे बड़ी बहनें ही क्यों ना मौजूद हो। ये एक दिमाग में रखना चाहिए। जाहिर है घरों के अंदर ही मसाइल पेश आते हैं तो वहां पर ये चीज आ सकती है कि किसके ऊपर ये जिम्मेदारी जाएगी। अच्छा, अब ये तो अभी आ गया कि अगर बड़ा बेटा बाप की मौत के वक्त नाबालिग था तो आगे सिस्तानी फरमाते हैं कि फिर उसके ऊपर बालिग होने के बाद नमाज और रोजे उसके ऊपर वाजिब नहीं होते, अलबत्ता आगा खुई वगैरह फरमाते थे कि हो जाते हैं। अच्छा, अब एक मसला यह है कि अगर बड़ा बेटा इससे पहले के कजा अंजाम देता, यानी बड़ा बेटे पर बाप की कजा नमाजें आ गई थी और अभी उसको नमाजें पढ़ना थी लेकिन वो इंतकाल कर गया, तो क्या ये हुक्म जो है बाद के बेटों के ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा? तो इस पे उलमा फरमाते हैं कि नहीं, ये फिर हुक्म अगर बड़ा बेटा जिसको बाप के कजा नमाजें और रोजे अंजाम देने चाहिए थे इससे पहले कि उनके कजा अंजाम देता, खुद इसका अगर इंतकाल हो गया तो ये जिम्मेदारी बाद के बेटों पर मुंतकिल नहीं होगी, वाजिब नहीं है। लोग करवाना चाहें अपनी मर्जी से करवाना चाहें तो एक अलग बात है। अच्छा, अब एक मसला इसके अंदर लोग और भी पूछते हैं और ये अक्सर अब ये वाला मसला पेश आने लगा है कि बड़ा बेटा अगर नालायक हो और वो अदा ही ना करे, वो तो अपनी नमाजें नहीं पढ़ रहा है तो चे जाएगा कि वो अब्बा की नमाजें कैसे पढ़ेगा। वो अगर बड़ा बेटा नालायक है तब भी ये जिम्मेदारी दूसरों के ऊपर नहीं जाएगी, ये उसी के ऊपर ये जिम्मेदारी रहेगी, वही गुनाहगार होगा, बाद के बेटों के ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं जाएगी। अच्छा, अब एक मसला एक और भी है कि अभी आपने जैसे कि सुना था कि कातिल बेटे को मीरास नहीं मिलती, ये उस वक्त है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि बेटा कातिल तो है बाप का लेकिन मीरास उसको फिर भी मिलती है। मसलन ये उस वक्त का मसला था कि जब बेटे ने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करते हुए बतौर जुल्म जो है बाप को कत्ल किया, लेकिन बहुत से मसाइल ऐसे आते हैं कि जिसमें शरई मसले कि जिसमें बाप का कत्ल हो सकता है वाजिब हो जाए, जिसको महदूरु दम होना कहते हैं, लेकिन अभी उसकी तफसील में नहीं जा रहे। यानी कभी कभार खुद शरीयत इजाजत देती, अलबत्ता शरीयत ने इसमें कुछ मकरूहात वगैरह भी लगाए हैं कि मसलन अगर जिहाद हो रहा है और बाप जो है काफिरों के लश्कर में से सामने लड़ने के लिए आ रहा है तो बेटा अगर चाहे बाप को कत्ल कर सकता हो, बाप एक लिहाज से वाजिबुल कत्ल हुआ हुआ है, यानी कुफार के लश्कर की तरफ से लड़ने के लिए आ रहा है, बेटे के लिए मकरूह है कि वो अपने बाप को कत्ल करे, क्योंकि रिवायत में ये बात बयान हुई है इमाम ने एक एक शख्स को के जो के बादशाह वक्त ने حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اللہم صلو علی محمد و علی محمد. ان کی شان میں گستاخی کی تھی تو شان میں گستاخی کرنا واجب القتل کر دیتا ہے. حاکم شرع کے حکم سے پھر وہ قتل کیا جاتا ہے. امام سے پوچھنے کے لیے آیا, امام نے کہا کہ تیرے باپ نے اگرچہ کام کیا لیکن تو کسی اور سے یہ کام کروا لے, خود یہ کام نہ کر. اس نے کہا نہیں کہ میں یہ کام کو خود انجام دوں گا, میرے دل میں بہت غم و غصہ ہے حضرت زہرہ کی, اس نے شان میں گستاخی کی ہے. امام نے کہا نہیں, پھر بھی منع کیا اور کہا کہ تیری عمر کم ہو جائے گی. اس نے کہا مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے, اور گیا اور اس نے باپ کو قتل کیا اور ایک ڈیڑھ سال کے اندر وہ خود بھی مر گیا کیونکہ اس کی عمر کم ہو گئی. تو بہرحال کچھ مکروہات وغیرہ سلسلے کے اندر ہیں. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میراث اس بیٹے کو ملتی ہے جو کہ جس نے حکم شریعت کے تحت ہی مثلا اپنے باپ کو قتل کیا, اس کو محروم نہیں کیا جاتا میراث سے. یہ دماغ میں اس وجہ سے رہے کہ ایسا نہ ہو کہ مسئلہ دوسری طرف نکل جائے, لیکن یہ ابھی اتنا کامن پیش آنے والا اس لحاظ سے مسئلہ نہیں, کیونکہ دینی اعتبار سے بھی حاکم شرع کی اجازت کے بغیر کوئی بھی شخص کسی کو قتل نہیں کر سکتا ہے. تو یہ ایک مسئلہ اس کے اندر یہ ہے. پھر ایک مسئلہ یہ بھی پیش آتا ہے کہ ایک سوال اٹھتا ہے نا کہ بھئی یہ قاتل اور کافر کو باپ کی قضا نماز اور روزے کی فکر کیوں ہوگی کہ ان کو ان کے لیے یہ مسئلہ لکھا جا رہا ہے. ایک دماغ میں آتا ہے نا سوال کہ بھئی وہ تو پہلے سے ہی قاتل ہے, وہ تو کافر ہوا ہوا ہے, اس کا یہ مسئلہ کہ ان کے اوپر واجب ہے یا واجب نہیں ہے اس کو لکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے. ان کو نماز و روزے کی کب فکر ہوگی, اب مثلا قاتل بیٹے کو اپنے باپ کی نمازیں پڑھنے کی یا کافر کو اپنے باپ کی نمازوں کی. یہ اس وجہ سے ہے کہ بعض مراجع ایسے ہیں جیسے آغا خوئی, وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم لکھا جا رہا ہے دوسرے نمبر کے بیٹوں کے لیے, کہ اگر تمہارا بڑا بھائی جو ہے وہ قاتل یا کافر ہو جائے, باپ کا قاتل ہو یا کافر ہو, تو اس پر تو قضا نماز اور روزے انجام دینے واجب نہیں ہے, لیکن اس کے بعد جو بڑا بیٹا ہے آغا خوئی کے نزدیک یہ واجب اس کے اوپر چلا جائے گا آغا خوئی کے نزدیک سے. تو وہ یہ فرماتے ہیں اس مسئلے کو لکھے جانے کا مقصد یہ کہ ہم اس دوسرے بڑے بیٹے کو کے لیے یہ مسئلہ لکھ رہے ہیں کہ بھائی تمہیں یہ کام اب انجام دینا ہے, یہ قاتل اور کافر کے لیے نہیں لکھا جا رہا ہے کہ اس کو یہ احکام بتائے جا رہے ہیں. اور جو آغا سیستانی ہیں یا آیت اللہ خامنائی ہیں جس کو واجب نہیں سمجھتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات جو ہم مسئلہ لکھ رہے ہیں یہ اس وجہ سے لکھ رہے ہیں کہ بعد والے جو سوچیں گے کہ کہیں ذمہ داری ہم پر تو نہیں آ گئی, تو ہم ان کو یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ اب یہ ذمہ داری ان کی نہیں ہے, یہ صرف اور صرف تھی تو بڑے بیٹے کے اوپر تھی, قتل اور کفر کے سبب اس کے اوپر سے بہرحال وہ تو اس بات کو انجام نہیں دے رہا ہے, لیکن تم مت گھبرانا کہ اس کے بعد یہ ذمہ داری تمہارے اوپر آ گئی, اس وجہ سے ہم اس مسئلے کو لکھ رہے ہیں. یعنی میں نے اپنے الفاظ میں بتایا ہے کہ بعض اوقات دماغ میں آتا ہے کہ بھائی اس مسئلے کو اب اس مسئلے کو لکھنے کی ضرورت کیا ہے, قاتل اور کافر کو جب کوئی پرواہ ہی نہیں ہے اپنے باپ کی, وہ تو قتل کیا جا رہا ہے تو ان کی نماز روزہ کب انجام دے گا. تو یہ بات کے لوگوں کے لیے لکھا گیا ہے, وہ مراجع کے جو کہ کہتے ہیں کہ واجب نہیں, وہ دوسروں کو یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ بعد والے لوگ پریشان نہ ہوں, اور جن مراجع کے نزدیک یہ واجب ہے اگلے بیٹے بڑے بیٹے کے اوپر جیسے آغا خوئی, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہم اس کے لیے لکھ رہے ہیں کہ وہ نہیں کر رہا اب اپنے قتل و کفر کے سبب, تو ابھی واجب تم پر آ گیا ہے. بات واضح ہوئی؟ نہیں واضح ہوئی, ابھی ویسے بھی ایگزام ہے آپ کا تھوڑی دیر بعد. اچھا اب علماء نے اس میں ایک بات یہ لکھی ہے کہ جسے میراث ملتی ہے نا اسی کو باپ کے قضا نمازیں اور روزے کرنے ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ جس کو میراث نہیں مل رہی ہے جیسے قاتل اور کافر کو, تو اس کے اوپر نہیں ہوگا. ایک مسئلہ اس کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اگر باپ کے تمام بیٹے اس کی زندگی میں انتقال کر جائیں, حادثہ ہوا انتقال کر گئے باپ موجود رہ گیا اور پوتے موجود ہیں, تو کیا یہ ذمہ داری پوتوں کی طرف جاتی ہے یا نہیں جاتی؟ تو علماء اس میں فرماتے ہیں کہ پوتوں کے اوپر واجب تو نہیں ہے, لیکن احتیاط مستحب یہ ہے کہ پھر پوتے ادا کریں. اگر کسی باپ کے تمام بیٹے اس کی زندگی میں انتقال کر جائیں تو واجب تو نہیں ہوتی ہے پوتوں کے اوپر کہ وہ اپنے دادا کی جو ہے وہ قضا نماز اور روزے کو انجام دیں, لیکن احتیاط مستحب ضرور ہے. یعنی جو دیندار گھرانے ہیں اور وہ اس ذمہ داری کو ویسے بھی ادا کرنا چاہیں تو پوتوں کے اوپر احتیاط مستحب کے طور پر اس ذمہ داری کو ڈالا جاتا ہے, واجب البتہ نہیں. अच्छा, अब एक सवाल ये पैदा होता है कि आखिर बड़े बेटे के ऊपर ही ये वाजिब क्यों है भाई? और भी तो इतनी सारी औलाद है, इस्लाम चाहता तो सब में मसावी मसावी तकसीम कर देता, ये बड़े बेटे के ऊपर ही वाजिब क्यों है? इसके बहुत से अहतमालात उलमा ने लिखे हैं। यकीनी बात तो किसी रिवायत में या कुरान के अंदर बयान नहीं हुई है, लेकिन उलमा फरमाते हैं कि बहरहाल कुरान के अंदर है, हुक्म है कि वबिल वालिदैन एहसाना। वो उलमा के जो कि वालिद और वालदा दोनों को समझते हैं, तो वालिदैन का बहरहाल एक एहसान है, एक हक है कि और हकीकी एहसान यही है वालिदैन के ऊपर कि वाकईतन जो नमाज और रोजे जो उनके ऊपर वाजिब थे वो उनकी गर्दन से उतारे जाए। और बड़े बेटे के ऊपर यूं वाजिब किया है कि उलमा फरमाते हैं कि लगता है कि शरीयत ये कहना चाहती है कि इशारा देना चाहती कि बाप के मरने के बाद खानदान की जो मुदीरियत है, जो सरबराही है, अब ये बड़े बेटे के पास आ गई। इसको ये अपनी जिम्मेदारी का एहसास करे, ये लापरवाह बनकर ना रहे, दीगर बहुत से कामों की मसूलियत के साथ साथ मसलन बाप की कजा नमाज और रोजे भी इसके ऊपर डाल दिए गए। देखा जाए तो ये एक बोझ नहीं है, बल्कि कुरान की जो ये आयत है, वबिल वालिदैन एहसाना, ये उस आयत पर अमल के लिए एक अजीम अजर व सवाब देने की तमहीद के तौर पर यह चीज वाजिब की गई। यानी सोचो कि तुम अपने बाप के एहसान का एक लिहाज से, अगरचे वालिदैन के एहसान का बदला तो चुकाया नहीं जा सकता है, लेकिन कुरान ने कहा है कि बहरहाल वालिदैन के साथ एहसान करो, तो ये एक बहुत बड़ा तुम पर सआदत के तौर पर ये चीज वाजिब की गई। देखिए, बहुत सारे माशरों के अंदर आप देखती हैं कि जब बाप का इंतकाल हो जाता है तो बड़ा बेटा जो होता है उसको एक पगड़ टाइप की पहनाई जाती है, यानी ये इशारा होता है कि अब खानदान के बड़े तुम हो, तुम्हें इसका शिराजा बिखरने से बचाना है, तुम्हारी जिम्मेदारी इसमें है। और शरीयत ने भी इसका ख्याल रखा है कि आम लोग तो पगड़ पहनाते हैं, शरीयत ने चार चीजें बड़े बेटे का हक करार दी हैं जो मीरास से बिल्कुल हटकर, चार चीजें बाप की बड़े बेटे को दी जाती हैं जिसे हिब्वा कहा जाता है। हिब्वा ये खास एक चीज है, ये सबका हक नहीं है, ये सिर्फ बड़े बेटे का हक। यानी जब भी बाप के मरने के बाद मीरास तकसीम होगी तो ये चार चीजें निकाल के बड़े बेटे को दी जाएंगी, और उसके बाद फिर मीरास जो तकसीम होगी तो उसमें बड़े बेटे का अलग से हक होगा। यानी हिब्वा एक अलग से बिल्कुल एक चीज है जो कि सिर्फ बड़े बेटे का हक होता है। वो चार चीजें कौन सी हैं? वो उसमें लिबास है बाप का, बाप की अंगूठी है, कुरान है और तलवार है। अच्छा, यहां पर बड़ी दिलचस्प बहस है अभी, क्योंकि मीरास की गुफ्तगू नहीं हो रही है तो हम इसकी तफसील में नहीं जा रहे हैं। मसलन एक लिबास तो नहीं होता, किसी के पास कई लिबास हैं, तो बड़े बेटे को कौन सा लिबास मिलेगा? हो सकता है बाप के पास मुतअद्दिद अंगूठियां हो, कौन सी अंगूठी मिलेगी? बाप के पास कई कुरान हो तो कौन सा कुरान मिलेगा? बाप के पास मसलन कई तलवारें हों, या तलवारों के बजाय अगर कोई जदीद असलाह भी इसके अंदर आता है या नहीं आता, आता है और वो एक से जायद है तो कौन सा दिया जाएगा, वगैरह वगैरह। एक दिलचस्प बहस है जो कि मसलन मीरास की, वहां इस बहस यहां तो उसको नहीं छेड़ना है। लेकिन बहरहाल अब ये है कि जिस वही शख्स नमाज और रोजे को अंजाम देगा कि जिसे हिब्बा मिलेगा, जिसे हिब्बा मिलता है नमाज और रोजा उसी की जिम्मेदारी होती जो कि बड़ा बेटा है। अच्छा, उलमा ने ये चीज लिखी तो है, लेकिन कहते हैं इसमें इस तारीफ के अंदर एक टेक्निकल फॉल्ट है। टेक्निकल फॉल्ट मसलन ये कि कभी जिसको हिब्बा मिलता है वो हिब्बा लेके चला गया, लेकिन वालिद का नमाज और रोजा फिर भी वाजिब नहीं होता उस पर। अगर आप कहेंगे भाई हिब्बा लेने वाले के ऊपर नमाज और रोजा वाजिब होता है बाप का, तो कभी ऐसी कंडीशंस भी हैं कि जब हिब्बा भी ले लिया उसने, वालिद का नमाज और रोजा भी वाजिब नहीं। ये कब होता है? ये उस वक्त होता है कि जब मसलन बाप सोमो सलात का पाबंद हो, उसके ऊपर वाजिब भी नहीं था कोई, उसने सारी अदा करके गया है, तो अगर चाहे इसके ऊपर कोई वाजिब ही नहीं है बाप का नमाज और रोजा, तब भी इसको हिब्बा मिलेगा। ये नहीं कहा जाएगा, लोग कहेंगे भाई क्योंकि तुम पर बाप का कोई बोझ ही नहीं, तुम्हें कौन सा नमाज और रोजा उसका अंजाम देना, तो लिहाजा हिब्बा हम मीरास में तकसीम करो। दीगर भाई और बहनें मसलन ये कहने लगे, नहीं, बाप कजा नमाज रोजे अदा करके गए तो उस पर नमाज रोजा तो वाजिब नहीं, लेकिन ये हिब्बा फिर भी ले जाएगा। अच्छा, बाज औकात ये होता है कि कभी बाप की कजा और नमाज रोजे अदा करने वाले बड़े बेटे को हिब्बा नहीं मिलता, यानी वो बाप की कजा नमाज रोजा भी कर रहा है और हिब्बा भी नहीं मिल रहा। ये कब होता है कि मसलन बाप अगर मकरूज गया है, मसलन मिसाल दूं, अगर बाप मीरास छोड़ के गया 10 लाख, लेकिन 15 लाख के कर्जे हैं बाप के ऊपर, तो भी सारा हिब्बा समीत ये सब बेच बाच के बाप के कर्जे उतारे जाएंगे। बड़ा बेटा ये नहीं कह सकता कि अरे भाई हिब्बा तो मेरा अलग से खसूसी हक था, ये तो मुझे दे दो, बाप की और चीजें बेच दो और उससे कर्जा उतारो, लेकिन हिब्बा तो मेरे मेरे पास आना था ना, मैं इसको नहीं देना चाहता। इस्लाम कहता है नहीं, अगरचे बाप की कजा नमाजे रोजे भी तुम्हें करना है, लेकिन हिब्बा अभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मकरूज था बाप। तो ये सारी चीजें आप कहेंगे कि दिमाग में आता है ना कि भाई लिबास, अंगूठी, इसमें कितना पैसा लगेगा, इसे बेच के अदा करवाई जाए। तो बाज़ औक़ात ये हो जाता है, मतलब हो सकता है बाप के पास हीरे की अंगूठी हो, वो लाखों के अंदर है, तो बड़ा बेटा कह रहा है कि हिब्बा तो मेरा हक था। नहीं, बाज़ औक़ात ये होता है कि अगर लाखों की अंगूठी, हीरे की अंगूठी कोई है, तो अब इसको बेचो और बाप का कर्ज अदा करो। अगरचे तुम्हें कज़ा नमाज रोजे भी अंजाम देने हैं, लेकिन जो है तुमको हिब्बा फिर भी नहीं मिलेगा। तो कभी हिब्बा मिलता है और नमाज रोजा वाजिब नहीं होते, और कभी नमाज रोजा वाजिब होते हैं तो हिब्बा नहीं मिलता। लेकिन उलमा एक अमूमी तौर पर कहते हैं कि बहरहाल बड़ा बेटा वो है कि जिसे हिब्बा मिलता है। ये बात को समझाने के लिए बात कही जाती है। अच्छा, अगर बाज़ औक़ात उलमा कहते हैं एक चीज और भी है कि अगर बड़े बेटे बहुत मुतअद्दिद हों, मसलन दो बड़े बेटे हैं उसके, तो फिर किसकी जिम्मेदारी होगी? अब आप कहेंगे कि भाई ये दोनों बड़े कैसे हो सकते हैं? मसलन हो सकता है कि उसकी दो बीवियां हों और एक वक्त में दोनों के यहां विलादत हुई हो, अब दोनों ही बड़े बेटे हैं मसलन। तो अगर बड़े बेटे एक से जायद हों, तो फिर एहतियात वाजिब की बिना पर ये दोनों की जिम्मेदारी, यानी अगर दोनों में से कोई एक भी अंजाम दे दे तो दूसरे पर से साकित हो जाएगा, और अगर दोनों अंजाम ना देंगे तो दोनों गुनाहगार होंगे। अगर बड़ा बेटे मुतअद्दिद हो, तो फिर दोनों ही के ऊपर यह चीज वाजिब होती है। अच्छा, एक और भी चीज है कि जब बड़े बेटे पर बाप की नमाज और रोजे वाजिब नहीं होते, वो वक्त होता है कि जब कोई और रिश्तेदार खुद से मरहूम के कजा नमाज और रोजे को अंजाम दे ले। मसलन मरहूम के भाई ने अंजाम दे लिए, मसलन मरहूम की बीवी यानी जो बड़े लड़के की जो माँ थी उसने अंजाम दे लिए, बेटियों ने आपस में तकसीम करके अंजाम दे लिए, और बाप के कजा नमाज और रोजे इस तरह से उतर गए, अब बड़े बेटे के ऊपर वाजिब नहीं रहेगा, क्योंकि ये तो अदा करवा दी है उसने, यानी एक लिहाज से अदा हो गए, उसको पता चल गया कि अदा हो गए, तो लिहाजा बाप के ऊपर जो बड़े बेटा है उसके ऊपर फिर ये वाला वाजिब नहीं आएगा। ये उस वक्त है। अच्छा, एक मसला इसके अंदर ये और भी पेश आता है कि बड़ा बेटे मसलन बड़ा बेटा, उसको तो खुद अपनी नमाजें भी वाजिब हैं, अपने रोजे वाजिब हैं, पिछले चले आ रहे हैं, और अब्बा के भी आ गए उसके ऊपर, तो ये बड़ा बेटा कौन से पहले उतारे, यानी अपने पहले उतारे या अपने वालिद के पहले उतारे? तो यहां पर शरीयत ने उसको इख्तियार दिया है कि चाहे तो बड़ा बेटा अपने पहले अदा कर दे, चाहे वालिद के पहले अदा कर दे, चाहे कुछ अपने अदा करे, फिर उसके बाद वालिद के अदा करने लगे, फिर अपने अदा करे, फिर वालिद के अदा करने लगे, जिस तरह से भी चाहे उसको इख्तियार है। या आपने खुद उतारे, जाहिर है अपने तो खुद उतारने हैं उसको, और बाप के इजारे के ऊपर रखवा दे, ये भी सही है। अच्छा, अब इसमें एक मसला ये है, और वो एक लिहाज से दिलचस्प मसला हो जाता है, कि बाप पर अपनी नमाजें रोजे जो है वो थे, और बाप जो गया है वो खुद बड़ा बेटा था अपने बाप का, और उस पे अपने बाप के भी कजा नमाज और रोजे जो है वो थे, तो एक लिहाज से तो डबल डबल जिम्मेदारी हो गई कि बाप पर जो नमाज रोजे अपने थे, फिर उसके ऊपर अपने भी बाप के वाजिब थे, तो क्या ये भी अदा करने पड़ेंगे? तो उलमा फरमाते नहीं, ये नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ बाप के जो ने अपनी जो नमाज और रोजे कजा किए हैं, ये लेकिन अलग से जो वाजिब आ रहे हैं बाप के ऊपर, अगरचे बाप के ऊपर वो भी वाजिब थे, कि अपने बाप के क्यों नहीं पढ़े उसने, वो खुद बड़ा बेटा था जबकि, तो ये बाद वालों के ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं जाएगी, और ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ बाप की हद तक ये वाला मसला है। अच्छा, अब एक और भी मसला इसमें पेश आता है कि अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि मसलन बड़े बेटे ने बाप के नमाज और रोजे अदा कर दिए, या किसी और रिश्तेदार ने कर दिया अदा, तो क्या ये बाप पर से माफ भी हो जाते हैं? अच्छा, इसमें उलमा ये फरमाते हैं कि देखिए बड़े बेटे के ऊपर ये जो बाप की कजा नमाजें और रोजे हैं ना, ये मुस्तकिल अलग से वाजिब है। ख्वा अल्लाह बाप की कजा नमाजों और रोजे को माफी क्यों ना कर दे। यानी मसलन बाप, अल्लाह ने रहम किया और बाप, जाहिर है ये नमाज और रोजे अल्लाह का हक था ना, अल्लाह ने बिलफर्ज माफ कर दिया बाप पे, लेकिन बेटे को जरूर पकड़ा जाएगा कि तुम पर वाजिब था कि बाप के नमाज और रोजे को तुमने अदा क्यों नहीं किया। ये नहीं कि बस क्योंकि बाप के माफ हो गए थे तो बेटे के भी खुद बहुत माफ हो जाएंगे, नहीं, बेटे से अलग से पूछा जाएगा कि तुम पर ये चीज मुस्तकिल अलग से वाजिब थी तो तुमने इस वाजिब को अंजाम क्यों नहीं दिया। तो इसमें रूल ये है कि अगर बाप मरते वक्त अपनी नमाज और रोजा जो उसने जानबूझकर छोड़े थे उस पर नादिम था, शर्मिंदा था, वक्ते मौत बाप शर्मिंदा था, तो ख्वाह बड़ा बेटा नमाजें अदा करे या ना करे, बाप पर से इंशाल्लाह माफ हो जाएंगे, यानी शरीयत ने कहा। लेकिन अगर बाप शर्मिंदा नहीं था बल्कि मुसिर था, इनकारी था, तो ख्वाह बड़ा बेटा अदा ही क्यों ना कर दे, तब भी बाप पे से माफ नहीं होंगे। यानी ये बड़े बेटे से अलग से एक मुस्तकिल एक मसला है, इसका बाप की नमाजों और रोजे के माफ होने से कोई मसला नहीं। लेकिन ये जरूर है कि जाहिर है बड़े बड़ा बेटा जो है बाप की कजा नमाज और रोजे अंजाम दे रहा है तो रहमत इलाही इंशाल्लाह शामिल हाल हो जाए, उसकी रहमत जोश में आ जाए और वो बाप को भी माफ कर दे, वो एक उसका इख्तियार है। लेकिन बहरहाल ये है कि इसका बाप की कजा नमाज और रोजे के अजाब माफ होने से कोई ताल्लुक नहीं। बाप अगर नादिम था, शर्मिंदा था, तो उसके माफ हो जाएंगे इंशाल्लाह, चाहे बड़ा बेटा अदा करे या ना करे। और अगर बाप नादिम नहीं था और मुसिर था, तो ख्वाह बड़ा बेटा अदा ही क्यों ना करते, तब भी माफ नहीं होंगे। ये एक मसला है। तो इसमें एक बात ये भी है कि बाप की सिर्फ उन नमाजों की कजा अंजाम देना है जो यकीनी तौर पर कजा हुई, जो एहतमाली कजा है। मसलन बेटा सोच रहा है कि अब्बा जो है मेरे साथ गए थे, हम लोग सफर ज़ियारत पे गए थे, शायद नमाजें उनकी कुछ कजा हुई थी वहां पर, तो उन शायद या एहतमाली जो नमाजें हैं उनकी कजा वाजिब नहीं, जो यकीनी तौर पर उनकी कजा हुई सिर्फ उनकी कजा नमाजें वाजिब हैं। अलबत्ता वो जो एहतमाली हैं उनकी भी मुस्तहब ये है कि वो भी अदा कर दे, अदा करवा दे बड़ा बेटा वो, लेकिन मुस्तहब है, वाजिबात वाला मसला नहीं। अच्छा, कैसे अंदाजा लगाएं कि वालिद की कितनी नमाज और रोजे कजा हैं? तो वो कम से कम का अंदाजा लगाए कि कम से कम इतनी तो वालिद साहब को हमने पढ़ते देखा है और कभी नहीं पढ़ते थे, अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो इतना तो यकीनन उनकी कजा हुई होंगी। तो यकीनी तौर पर कम से कम अदद जो है बस उसके मुताबिक पढ़वा दे, अगर उससे ज्यादा कुछ निकली मैदाने कयामत में तो इंशाल्लाह वो माफ हो जाएंगी। अच्छा, इसी में एक मसला ये भी आता है, अगर बाप काफिर है तो जाहिर है ये तो वाजे सा मसला है कि बाप अगर काफिर है तो उसकी कजा नमाज और रोजे ये बड़े बेटे के ऊपर वाजिब नहीं होते। लेकिन एक मसला और कॉमन पेश आने वाला है, और वो ये है कि मरहूम बाप अगर गैर शिया मुसलमान था और बेटा उसका मसलन शिया हो गया था, बड़ा बेटा अगर शिया हो तो क्या उस पर वालिद की कजा नमाज और रोजे वाजिब होते हैं? बाप गैर शिया मुसलमान और बेटा शिया, जो बड़ा बेटा है उसका, उस बड़े बेटे के ऊपर जो कि शिया है, अपने गैर शिया मुसलमान बाप की कजा नमाज और रोजे वाजिब नहीं होते। यानी पढ़वा दे तो ठीक है, अपनी मर्जी है उसकी, लेकिन बहरहाल वाजिब उसके ऊपर नहीं है, काफिर के भी नहीं है और गैर शिया के भी नहीं। अच्छा, ये भी चीज कर सकते हैं इसके अंदर कि एक वक्त में बहुत सारे अफराद भी मरहूम की नमाज और रोजे को तकसीम कर सकते हैं। मसलन कोई कहे कि भाई फजर की नमाज जो है वो मेरे जिम्मे है, दूसरा कहे कि जोहरैन की जो है वो मेरे जिम्मे है, तीसरे को आप कह देंगे मगरबैन उसके जिम्मे है, और नमाज आयात जो चौथा है उसके जिम्मे, मसलन इस तरह से भी तकसीम की जा सकती, कई अफराद मिलकर भी तकसीम कर सकते हैं। अक्सर लोग ये कहते हैं कि क्या कोई ऐसा तरीका है कि मरहूम के, क्योंकि कजा नमाज और रोजे बहुत ज्यादा हैं, मसलन अगर हम पढ़वाने लगे तो मसलन 70 साल की नमाजें कितनी, बहुत टाइम लग जाएगा, तो तो कोई ऐसा कोई तरीका है कि हम जल्द अदायगी इसकी कर दें? तो जी हाँ, बाज़ औक़ात ये होता है कि अगर नमाज़ें इजारा के ऊपर पढ़वाई जा रही हैं, रोज़े इजारे पर रखवाए जा रहे हैं किसी और से, तो बाज़ औक़ात बहुत सारे मदारिस ऐसे हैं जो कि ख़ास तौर पर जो तालिबे इल्म जहाँ पर रहते हैं, मसलन 30 तालिबे इल्म भी अगर हैं, और आम तौर पर ज़्यादातर वो, क्योंकि कौम का एक मिजाज है कि जो दीनी तालिबे इल्म है इसका मतलब है कि वो मुस्तहिक भी होगा, वो तो बेचारे उनको हर वक्त पैसों की ज़रूरत भी होती। तो अगर 30 तालिबे इल्म भी हैं और मसलन वो 30 के 30 को इजारा दे दिया जाए और वो सब लोग एक दिन रोजा रख लें, तो मरहूम के 1 साल के रोजे एक ही दिन में अदा हो जाएंगे, यानी 1 महीना जो बनता है। और इसी तरीके से अगर उन लोगों ने मिलकर 1 महीने भी रोजे रख लिए इजारे पर, तो 30 साल के रोजे अदा हो जाएंगे 1 महीने के अंदर। और इसी तरीके से मसलन अगर वो, बाज़ औक़ात ये होता है 1 साल की जो नमाज है 1 माह के अंदर अगर वो पढ़ लेते हैं, तो कितनी जल्दी इस लिहाज से, और ये तादाद ज्यादा भी हो सकती है, आपने 30 किसी जगह पे हैं, कोई किसी मदरसे में इतने हैं, वहां के प्रिंसिपल हजरात या उलमा वगैरह से बात कर लें, अगर वहां के लोग पढ़ने को तैयार हैं, तो बहुत ही जल्द भी अदा हो सकते हैं। तो बहरहाल ये एक तरीक़ेकार है इसका, जो कि इस तरह से किया जा सकता है। अलबत्ता ये जरूर है, दिमाग में आता है कि आखिर कितनी जल्दी वालदेन के अदा करवा देने चाहिए, या बड़े बेटा कितनी जल्दी अपने बाप के अदा करवा दे। तो देखिए, फौरन अदायगी तो मौत के बाद जरूरी नहीं, यानी ऐसा नहीं कि वाजिब है कि फौरन बाप इधर इंतकाल हो और उधर बहुत जल्दी अदा करवा दी जाए, लेकिन बहरहाल एहतियात एहतियात मुस्तहब है, अहवत औला है, बहुत ही मुनासिब है कि जितनी भी जल्द हो सके इस काम को अंजाम दे लिया जाए। अक्सर उलमा इसकी मिसाल देते हैं कि देखिए, आमतौर पर लोग क्या करते हैं, वाजिबात से सरफे नजर करते हैं, मजलिस करवा रहे हैं, कुरान खानी करवा रहे हैं, सब मुस्तहबात हैं जो उस तक पहुंच रहे हैं। जैसे कोई कैदी होता है, उसे हम जुर्माना दे के कैद से आजाद नहीं करवा रहे, बल्कि तोहफे तहफ पहुंचा रहे हैं, तो क्या करते हैं जेल वाले, वो ले लेके रखते रहेंगे। पाकिस्तानी जेल की बात नहीं कर रहा कि वो खत्म हो जाए, अमलाई खा ले, या मसलन स्कूल की जो टीचर्स हैं वो बच्चे का जो लंच बॉक्स वगैरह में से निकाल के खा लेते हैं, वो वाला तो यहाँ का मसला है। लेकिन ये कि आम तौर पर मसलन वो अगर कोई चीज काम करते हैं कोई वहां पर, और कोई उजरत तो उनकी होती है, तो वो सेव करके संभाल के रखी जाती है, जब ये रिहा होते हैं उस वक्त उनको दिए जाती है। तो एक लिहाज से वो अपने उस गुनाह के तहत वहां पर अजाब में गिरफ्तार है, एक लिहाज से कैद है। तो जितने भी मुस्तहबात जा रहे हैं वो एक लिहाज से स्टोर करके रखे जा रहे हैं कि जब भी इनको कैद से रिहाई मिलेगी तो इसका यकीनन उसका वहां पे भी कोई कुछ ना कुछ फायदा उनको मिल रहा होगा, लेकिन असल जो चीजें हैं कि उनके वाजिबात उतारे जाएं। तो बाप की कजा नमाज और रोजे जिस कदर भी जल्द मुमकिन हो कि बहरहाल ये ना उतार देने चाहिए, और इसी तरीके से अगर माँ की भी कोई शख्स पढ़ना चाह रहा तो उसी उसी वक्त ज्यादा उसको मुस्तहबात का सवाब अच्छा भी लगेगा, जब उस कैद से उन अजाबों से रिहाई हासिल कर लेगा वो। अच्छा, अब एक सवाल इसके अंदर ये पैदा होता है कि मरहूम की जो, हाँ ये भी बात बता दीजिए कि कजा नमाजें जमात की सूरत में भी अदा की जा सकती हैं, कजा नमाज को जमात से भी पढ़ा जा सकता है, तो इजारे पर भी नमाजें जमात से अदा हो सकती हैं। तो बहुत सारे दीनी तालिबे इल्म वगैरह वो जमात वगैरह भी का इनेकाद कर लेते हैं, ताकि जल्द से जल्द, मसलन सोचते हैं कि एक दिन में हम 12-12 दिन की जो है नमाजें, तो कई उनके लिए बहरहाल एक रोजगार का भी इंतजाम हो जाता है, मसलन वो ट्यूशंस वगैरह पढ़ा के घरों घरों में जाकर बहुत ही कम पैसे उनको मिलते हैं, तो एक जगह पर रहते हुए ही वही मेहनत, तो उनको बसों में इधर उधर जाएं तो एक जगह पर रहते हुए नमाजों को अदा कर लें, और उसमें उनको कुछ उनकी आमदनी हो जाती है और गुजर औकात हो जाती है, तो इस तरह से भी हो सकता है। अच्छा, अब जो भी मरहूम की नमाज अदा कर रहा है वो किस फरीजे पर अमल करेगा, मरहूम के शरई फरीजे पर अमल करेगा या अपने फरीजे के ऊपर अमल करेगा? मसलन एक तो दूसरा सवाल इसके अंदर ये होता है कि क्या कोई औरत किसी मर्द की और मर्द किसी औरत की कजा नमाजें अदा कर सकती? अच्छा, इसमें देखिए, जाली नमाजें पढ़ने वाले भी आजकल बहुत हैं, यानी जो कि जाली तौर पर हैं, ना जिनको मसाइले फिका का पता है ना कुछ पता है, वो भी इस फील्ड के अंदर आ गए। कोई कह रहा है, जैसे आपने पिछली दफा सुना था, कोई माजूर है वो कह रहा है कि मैं नमाज इजारा पढ़ रहा हूँ, जबकि आपने सुना पिछली दफा कि वो अपनी तो पढ़ सकता है जो अपनी सेहतियाबी से मायूस हो, लेकिन दूसरे की नहीं पढ़ सकता। बहुत से इस किस्म के जाहिल अफराद कहते फिर रहे होते हैं कि भाई मर्दों की जो है वो नमाज मैं पढ़ता हूं, और जो औरत की अगर है तो वो मेरी बीवी पढ़ती है मसलन, यानी वो सोचते हैं शायद इस मसले के अंदर कोई फर्क है औरत और मर्द का। नहीं, इसमें यह है कि अगर औरत है वो मर्द की नमाज पढ़ सकती है, मर्द औरत की नमाज पढ़ सकता है, लेकिन हर कोई अपने फरीजे पर अमल करेगा। یعنی مرد اگر نماز پڑھ رہا ہے کسی عورت کی تو جب یہ بالجہر پڑھے گا مثلا فجر کی، مغرب اور عشاء کی، تو یہ اس کو پہلی دو رکعت میں الحمد اور سورہ بلند آواز سے پڑھے گا، تو عورت والے فریضے پر عمل نہیں کرے گا. اسی طریقے سے عورت ہے وہ مرد کے فریضے پر عمل نہیں کرے گی، کیونکہ میں مرد کی پڑھ رہی ہوں تو پھر میں جو ہوں میں اس کے مطابق پڑھوں. یا مثلا جو اس کی حالت تھی، مثلا کوئی مریض تھا اور اس کا فریضہ واجب یہ تھا کہ اس وقت وہ بیٹھ کے نماز پڑھے، کیونکہ وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ ہی نہیں سکتا تھا. تو کوئی شخص یہ نہیں کر سکتا کہ بھائی میں کیونکہ اس مریض کی نماز پڑھ رہا ہوں اور وہ والی نمازیں پڑھ رہا ہوں کہ جو اس نے حالت مرض میں جو اس سے مثلا قضا ہوئی تھی، تو اس کا فریضہ تو بیٹھ کے نماز پڑھنا تھا، تو مجھے بھی اجازت مل جائے، تو ایسا نہیں. یعنی اس کو وہ جو نمازیں ہیں اپنے فریضے کے مطابق، ایک صحت مند شخص کے فریضے کے مطابق کھڑے ہو کر ہی پڑھنا، یہ ایک اس کے اندر مسئلہ پیش آتا ہے. اچھا، اب ایک بات اس میں اور بیان کر دی جائے، وہ یہ ہے کہ کیا والد کے روزوں کے کفارے بھی ادا کرنے ضروری ہوتے ہیں؟ تو والد کے روزوں کے کفارے یہ بڑے بیٹے پر واجب نہیں ہوتے. نمازیں واجب ہیں، قضا روزے واجب ہیں، لیکن فی روزہ ہر روزے کے بدلے، کیونکہ والد نے جان بوجھ کے چھوڑا تھا تو ایک روزے قضا رکھنا ہوتا ہے اور 60 روزے کفارے کے طور پہ رکھنا ہوتے ہیں، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوتا ہے. تو نہیں، یہ چیزیں بڑے بیٹے کے اوپر واجب نہیں. یعنی والد کے روزوں کے کفارے جو ہیں یہ بڑے بیٹے پر واجب نہیں. یا والد نے مثلا یہ کیا تھا کہ والد صاحب خود ہی اجارے کی نمازیں پڑھتے تھے، اچھا اجارے کے پیسے لے کے انہوں نے استعمال کر دیا اور نمازیں پڑھی نہیں، اور اس کے بعد والد صاحب کا انتقال ہو گیا، وہ نمازیں باقی ہیں جو واجب تھیں والد کے اوپر، تو کیا یہ بھی بڑے بیٹے کو پڑھنا ہے؟ تو جواب ہے کہ جی نہیں، یہ اجارے کی نمازیں بھی والد کے اوپر اگر واجب ہو گئی تھی، یہ بڑے بیٹے کو نہیں پڑھنا، یعنی اس کے اوپر واجب نہیں. اچھا، اب یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ کیا اس بات کی تحقیق کرنا ضروری ہے کہ والد کی جو قضا نمازیں اور روزے کچھ واجب تھے بھی یا نہیں تھے. مثلا والد صاحب پڑھتے تھے لیکن بہت دقت کرنی پڑے گی، تحقیق کرنی پڑے گی، ارے ان کی کچھ نمازیں رہ تو نہیں گئی ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ والد کی قضا نماز اور روزے کی تحقیق کرنا واجب نہیں. بس جتنا آپ کو یقینی طور پر علم ہے ان شرائط کے تحت جو بھی آپ نے سنی ہے چھ، تو بس اتنی ہی نمازیں پڑھنا، یعنی یہ تحقیق کرنا آپ کے لیے واجب نہیں. اچھا، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ والد کی کچھ نمازیں قضا ہوئی تھیں، لیکن والد صاحب نے انہیں ادا بھی کر دیا تھا یا نہیں، کیونکہ والد صاحب ویسے تو نمازیں پڑھتے تھے، مثلا سفر میں ہمارے ساتھ تھے اور واقعتاً نمازیں ان کی قضا ہو گئی تھیں، تو والد صاحب کی قضا تو ہوئی تھیں اس بات کا یقین ہے، لیکن والد صاحب نے ادا کیے یا نہیں کہ یہ پتہ نہیں. تو والد صاحب کی اگر نمازیں قضا ہوئی تھیں لیکن یہ پتا نہ چلے کہ انہوں نے ادا کی تھی یا نہیں، تو اس صورت میں علماء کا نظریہ یہ ہے، خاص طور پر آغا سیستانی وغیرہ فرماتے ہیں، احتیاط واجب یہ ہے کہ بڑا بیٹا ان نمازوں کی بھی قضا کرے گا. یعنی والد کی وہ نمازیں جس کے قضا ہونے کا تو یقین ہو لیکن یہ پتا نہ ہو کہ انہوں نے ادا کی تھی یا نہیں، احتیاط واجب ہے کہ ان کی بھی قضا کرو. اچھا، اب ایک مسئلہ لوگ یہ بھی آج کل بہت پوچھتے ہیں کہ بہت امکان ہے کہ والد صاحب کا شاید انتقال ہو گیا، جیسے والد صاحب وینٹیلیٹر پہ ہیں، بہت سے لوگ آ کے کہتے ہیں کہ والد صاحب کی برین ڈیتھ ہو چکی، ڈاکٹر حضرات کہہ رہے ہیں، تو کیا بس ان کی نمازیں روزے فوراً شروع کروا دیں؟ بہت سے لوگ ہوتے ہیں ذرا بہت ایکٹیو ہوتے ہیں کہ تو باپ کی جب تک موت عرفی کا یقین نہ ہو جائے، یعنی یقینی طور پر جس طریقے سے کہ بس اب یہ مر گئے ہیں، اب دفن وغیرہ کرنے کے لیے لے کے جانا ہے غسل کے لیے، یعنی جسے موت عرفی کہتے ہیں، جب تک اس کا یقین نہ ہو جائے تب تک ان کی قضا نمازیں اور روزے انجام نہیں دیے جا سکتے، خواہ ان کی برین ڈیتھ کا ڈاکٹرز کہہ رہے ہوں لیکن ویسے مشینوں کے اوپر جو ہے وہ چل رہے ہوں، آکسیجن بھی لگی ہوئی ہے اور جو مختلف چیزیں ان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں اور وینٹیلیٹر لگا ہوا ہے، تب تک ان کی نمازیں اور روزے جو ہے یہ شروع نہیں کروائے جا سکتے، یقینی موت ہونی چاہیے. یعنی یہ جو فیسلٹی ہے، کوئی شخص چاہے کہ اس کی نمازیں اور روزے دوسرے لوگ ادا کروا دیں، تو اس فیسلٹی کو اویل کرنے کے لیے مرنا ضروری ہے اس کے لیے پہلے. جیسے ایک صاحب کہیں سن رہا تھا میں کسی جگہ، پیش امام صاحب اعلان کر رہے تھے کہ انشاءاللہ کل سے مسجد کا جو ملحق غسل خانہ ہے، میت خانہ، اس کا کل سے انشاءاللہ افتتاح ہو جائے گا. ان شاء اللہ کے معنی کل کوئی صاحب ضرور مریں گے اور یہاں پر آئیں گے، تو اس طرح سے بھی بعض اوقات سننے میں آتا ہے. या किसी कब्रिस्तान का मैंने पढ़ा था कि नए नए कब्रिस्तान के फलां तारीख से फलां तारीख तक जो भी मुर्दे पहले दफन होने के लिए आएंगे स्पेशल डिस्काउंट दिया जाएगा उनको। तो इस तरह से भी होते हैं बहुत से लोग। तो बहरहाल यकीनी तौर पर पता होना चाहिए कि इंतकाल हो गया है, लेकिन अगर ब्रेन डेथ और ये वेंटिलेटर पे होना ये नहीं है कि, और जब चाहे डॉक्टर हजरात यही क्यों ना कह रहे हो 100% कि बस ये हमारे अदबार से तो ये मर ही चुके हैं अब कोई फायदा नहीं है, लेकिन जब तक मौत उर्फी ना हो जाए तब तक नमाज रोजा नहीं शुरू करवाई जा सकती। इसी तरीके से जो मरज मौत में कजा शुदा उसकी नमाजें होती हैं उनकी भी कजा लाजिम नहीं है, जैसे कि आमतौर पर मरीज अगर कोमा वगैरह में था तो उन नमाजों की कजा बड़े बेटे के ऊपर वाजिब नहीं होती। अच्छा, अब यह है मसला कि बड़ा बेटा या तो खुद अदा करेगा या किसी और से अदा करवाएगा, या तो खुद अदा करे या किसी और से अदा करवाए, ये उसकी मर्जी है। और ये भी आपकी खिदमत में बात बयान हो गई कि इजारे के लिए मीरास से पैसे नहीं लिए जा सकते सिवाय इसके कि वो वसीयत करके गया हो। बाप वसीयत कर सकता है और किसी को अगर एतराज ना हो तो नमाज और रोजे के पैसे मीरास से लिए जा सकते हैं, अगर किसी को एतराज ना हो। अगर एतराज हो गया तो एक तिहाई में से लिए जाएंगे और फिर जो नमाज और रोजा बच जाएंगे वो बड़े बेटे के ऊपर आ जाएगा। अच्छा, अब एक मसला यह है कि क्या बाप अपनी नमाज और रोजे की अदायगी के पैसे निकालकर अपनी जिंदगी में अलग कर सकता है। देखिए, इसके अंदर लोग कहेंगे भाई मेरा ही पैसा है मैं निकाल के अलग करके रख रहा हूं कि देखो ये जो है ना ये मरने के बाद इससे मेरा नमाज और रोजा करवाया जाए। इसके अंदर एक टेक्निकल मसला ये आता है कि ये वसीयत कर तो सकता है ऐसी, लेकिन अगर कोई वरासा में से कोई एक भी इस पर तैयार नहीं हुआ, उसे पता है कि भाई जो जिस्मानी इबादत हैं इसके पैसे मीरास में से नहीं लिए जा सकते, तो बिलावजह हमारे पैसे कम हो रहे हैं, अब्बा की तो 80 साल की नमाजें और पता चला 10 लाख रुपए तो उसी के अंदर निकल जाएगा, हमें जरूरत है और वाजिब भी नहीं है, तो कोई अकड़ सकता है इसके अंदर। और बाप ने अगर ये निकाल के रख दिया तो क्या होगा, एक तिहाई की हद तक तो वसीयत पे अमल होगा, बाकी 2/3 मीरास में जाएगा। तो इस मसले को कैसे हल करे वो, और बाप को पता है कि मरने के बाद मेरी औलाद गड़बड़ करेगी इसके अंदर। इस वसीयत के मसले में जो ये पेचीदगी है इससे बचने का एक हल भी है, यानी बाप अगर अपनी जिंदगी में हिस्से देकर लोगों में हिस्सा कि भाई मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में इतना हिस्सा जो है वो दे रहा हूं और उसका एवज में तुम ये जो पैसे हैं इसको टच नहीं करोगे, ये इससे मेरे नमाज और रोजे करवाए जाएंगे, तो फिर वो औलाद उससे फिर नहीं सकती अपने इस कॉल से। वो चाहे तो अपने कफारों की अदायगी ये उन सब के लिए पैसे अलग कर सकता है, फिर बाद में अगर ये औलाद उसके एवज पे किसी कोई चीज उसको दे दी जाए और उस पर वो तैयार हो जाए अपनी जिंदगी में, तो मीरास में से उतने पैसे जो है माइनस हो जाएंगे उनके। ये शरीयत के तहत किया जा सकता है। मसलन कोई, अच्छा आम जिंदगी में भी एक मसला है, मसलन बेटा है वो बैरून मुल्क पढ़ने जाना चाहता है, कहता है कि अब्बा मसलन मैं फलां जगह जाऊंगा, मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, मुझे स्पेशलाइजेशन करनी है और वहां मसलन इस टोटल 25 लाख रुपए मसलन खर्च होंगे। अब बाप पर वाजिब तो नहीं है कि ये पैसे इसके लिए नानो नफके के तौर पर औलाद को दे कि वो आके आला तालीम हासिल करे। तो बाप ये कर सकता है, कहता है ठीक है मैं तुम्हें इतने पैसे दे रहा हूं, लेकिन इस शर्त उसके अंदर डाल दे कि फिर तुम उसके बाद इतनी जो भी मीरास मिलेगी इतने पैसे तुम्हारी मीरास में से माइनस हो जाएंगे, और वो बेटा को डील कर ले तो बाद में, वरना ये होता है ना कि 25 लाख ये मसलन उस पर भी ले गया, अपनी उस पर पढ़ाई पे भी खर्च करवा लिए और बाद में मीरास में भी से पूरा मिल रहा है, तो जो लोग पढ़ाई पे जिनके खर्च नहीं हुए वो एक लिहाज से लॉस में रहते हैं कि ये किसी एक शख्स को ही ज्यादा चला गया। या मसलन बेटी है उसकी शादी का मसला है, ठीक है शादी करवाना बाप पर वाजिब है, लेकिन इतनी शान और शौकत के साथ शादी जैसे कि बेटियां आमतौर पर तकाजा कर रही हैं हमारी, बहुत अब जनाब ड्रोन कैमरे भी इसमें इस्तेमाल होने चाहिए और फला चीज भी होनी चाहिए, तो फिर बिल फर्ज अगर बाप तैयार हो जाता तो कहेगा कि ठीक है तुम्हारी शादी में मसलन ये 15-20 लाख रुपए खर्च आ रहा है और मैं करने को तैयार हूं, लेकिन फिर मीरास में से इतने पैसे माइनस हो जाएंगे क्योंकि मुझ पर वाजिब नहीं कि इतने ज्यादा शान शौकत वाली शादी करो। तो बहुत सारे इस तरह की चीजें हल निकल सकते हैं चीजों के अंदर कि जिसमें डील कर ली जाए, और तो फिर ये मीरास में से उतना हिस्सा अलग भी किया जा सकता है। अच्छा, अब एक मसला इसके अंदर ये भी आता है कि क्या इजारे पर पैसे देने से बस हम किसी मौलाना साहब को, किसी दीनी तालिब इल्म को, जो भी नमाज़े इजारा पढ़ रहा है हमने उसको पैसे दे दी, तो क्या बस अदा हो गए? उलमा कहते हैं नहीं, यानी इत्मीनान होना चाहिए कि ये शख्स पढ़ेगा, एहतमाल इसका कवी, यानी इसका इम्कान होना चाहिए कि ये पढ़ेगा, और उसके बाद वो पढ़ दे तब अदा होंगे। मसलन आपने पैसे उसको दे दिए, बाद में पता चला कहीं से कि वो तो उसने तो पढ़े ही नहीं है, तो अगरचे पैसे वो लेकर फरार होने का जो है गुनाहगार है, लेकिन बड़ा बेटा ये नहीं सोच सकता कि मैंने पैसे अदा कर दिए बस अब तो नहीं, अभी तक तुम्हारी जिम्मेदारी वैसी बाकी। यानी फकत पैसे देने से अदा नहीं होगा जब तक कि उसकी अदायगी का यकीन ना हो जाए कि अदा भी हो गए, तो चाहिए कि उसको गाहे बगाहे जिनको दिया उनसे पूछता रहे अब कितने आपने पढ़ लिए, कि ताकि उनके ऊपर भी वैसा भी प्रेशर रहे और उसको भी इत्मीनान रहे कि हाँ पढ़े जा रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद एक इसमें यह भी आता है कि किस तरीके से बाप की कजा नमाजें अदा की जाएं, जिससे भी देखें पढ़वाएं उसको मसाइल फिका से आगाही होनी चाहिए। मसलन जो खुद पढ़ रहा है उसके ऊपर कितनी जिम्मेदारी, कि वो पैसे भी ले रहा है और उसके बाद मसाइल शरीयत के तहत उस सही तरह पर नमाज भी नहीं, मसलन उसने अगर डील नहीं किया कि जनाब बस उसने पैसे लिए कि मैं नमाजें पढ़ूंगा, तो फिर अगर कोई चीज उसने तय नहीं की है इस तरह से, तो फिर उसको तमाम मुस्तहबात जो आम तौर पर नमाज के सिलसिले में होते हैं उनकी पाबंदी करना पड़ेगी। मसलन अजान व अकामत भी देना पड़ेगी, जितने मुस्तहबात कुनूत भी पढ़ना पड़ेगा, और तकबीरा तकबीर और इस्तगफार और जितने भी कुछ इस तरह से जिसमें, यानी जितने मुस्तहबात हैं उनकी अंजामदही वाजिब रहेगी। तो अगर कोई शख्स जल्दी पढ़ना चाहता है तो फिर वो उसको डील करनी पड़ेगी बाकायदा पैसे लेते वक्त कि मैं सिर्फ वाजिबात के साथ मशरूत पढ़ूंगा, यानी वो पहले से कह दे कि भाई मुस्तहबात वगैरह की मैं डील नहीं कर रहा, सिर्फ वाजिबात पढ़ूंगा, इन नमाज अदा हो जाएगी, तो फिर उसके लिए जरूरी नहीं रहेगा कि वो मुस्तहबात वगैरह को भी अंजाम दे। लेकिन अगर उसने कुछ डील नहीं किया और बस सिर्फ पैसे ले लिए, उसने कहा 5 साल की नमाजें पढ़नी है, पैसे ले लिए, अब इसको नमाज को मामूलन जितना लोग मुस्तहबात अंजाम देते हैं उतने मुस्तहबात इसको अंजाम देने पड़ेंगे, और अगर ये इसने नहीं अंजाम दिए तो या तो उतने पैसे वो वापस करे उसको जिससे उसने इजारा लिया है, या उससे माफ करवाए वगैरह। अच्छा, अब एक यहां एक ये भी मसला पेश आता है कि इजारे की जो नमाजें किसकी तकलीद के मुताबिक पढ़ी जाएंगी, यानी मसलन कोई शख्स इजारे पे नमाज पढ़ रहा है वो अपनी तकलीद के मुताबिक नमाजें पढ़े, या मरहूम की तकलीद के मुताबिक पढ़े, या जिसने इजारे के पैसे दिए बड़ा बेटा उसकी तकलीद के मुताबिक पढ़े, किसकी तकलीद के मुताबिक? भाई नमाजें पढ़ रहा है मरहूम की, दिल में ख्याल ये आता है कि भाई इसे मरहूम के जो मर्जे तकलीद था उसके फतवे के मुताबिक पढ़नी चाहिए, फिर दिमाग में आता है इसे पैसे कौन दे रहा है, जो उजरत दे रहा है उसके उसके फतवे के मुताबिक पढ़नी चाहिए उसके मुज्तहिद के, या ये वो ये सोचे कि भाई क्योंकि ये मैं पढ़ रहा हूं तो मुझे अपने मुज्तहिद के मुताबिक पढ़नी। तो बहरहाल ये अच्छा ये मसला हज के अंदर भी जाता है, और ये मसला उस वक्त बहुत पेचीदा हो जाता है कि जब मरहूम किसी की तकलीद भी ना करते हो, मरहूम तकलीद ही नहीं करते थे किसी की। बहरहाल अभी फिलहाल हम इसकी हद तक ही रहते हैं, तो इसमें आगा सिस्तानी ये फरमाते हैं कि ये अपने वजीफे के मुताबिक अमल करेगा, यानी अपने मर्जे तकलीद के फतवे के मुताबिक इस नमाज को पढ़ेगा, इजारे की नमाजें। अच्छा, अब कि क्या बाप की कजा नमाजें बैठ के पढ़ सकते हैं, तो भी आ गया कि बैठ के पढ़ने की इजाजत नहीं, यानी अपने फरीजे के मुताबिक अमल करेगा। अच्छा, बाप की कजा नमाजों में नमाज पंजगाना के साथ नमाज आयात भी आती हैं, ये भी बाप पर वाजिब थी, नमाज आयात ये पढ़नी है उसको, और इसकी तफसील का भी मौका नहीं है, लेकिन नमाज तवाफ की भी, अगर मसलन बाप ने नमाज तवाफ नहीं पढ़ी थी तो उसकी कजा भी अंजाम देनी है, लेकिन इसका भी मौका नहीं है कि इसको बयान किया जाए। अच्छा, बाज़ औक़ात ये होता है कि बाप ने मुस्तहब नमाज नजर करके वाजिब कर ली थी, क्या उसे भी अदा करना है? तो इसका जवाब ये कि नहीं, बाप ने अगर किसी मुस्तहब नमाज को नजर करके अपने ऊपर वाजिब कर लिया था तो उसकी उन नमाजों की जो कजा है ये बड़े बेटे को उस नजर को पूरा करना जो बाप के ऊपर नजर के जरिए वाजिब हो गई थी उन नमाजों को पढ़ना ये बड़े बेटे के ऊपर वाजिब नहीं। अच्छा, इसी तरह से एक सवाल ये भी, अब जितने भी मुमकिन सवाल हैं वो जल्दी जल्दी बयान कर रहा हूं, इंशाल्लाह उसके बाद पांच मिनट में खत्म हो रहा है दर्स। वो ये है कि क्या गैर मोमिन को अजीर बना सकते हैं? बहुत सारे गैर मोमिन ऐसे हैं कि उनकी करात बहुत अच्छी होती, उन्होंने मसलन शिया तरीके से नमाज भी पढ़ देंगे वो, तो क्या उनको हम अजीर बना सकते हैं कि भाई आप पढ़ दीजिए, शिया तरीके से पढ़िएगा, करात भी आपकी अच्छी है मसाइल वगैरह के तहत? नहीं। तो इसमें जवाब ये कि जी नहीं, गैर मोमिन को अजीर नहीं बनाया जा सकता, चाहे वो सही करात के साथ सही मसाइल शरीयत के तहत ही क्यों ना पढ़े। और इसी तरीके से किसी बच्चे को भी अजीर नहीं बना सकते। मसलन नाबालिग बच्चा है, ये मदरसे वगैरह जाता है, नमाज इसकी बेहतरीन हो गई है, बेटा हम आपको इतने पैसे देंगे, करात भी आपकी बहुत अच्छी है, आप पढ़ दीजिए। नहीं, काफी नहीं, बाप की नहीं उतरेंगी नमाजें, बच्चे को भी अजीर नहीं बना सकते। अच्छा, कुछ उलमा ऐसे हैं वो ये कहते हैं कि आप पैसे देकर नमाजें पढ़वाना सही है। एक सवाल है ना भाई, नमाजें तो अल्लाह के लिए पढ़ी जाती हैं, इसमें जो आदमी ले रहा है, नहीं पहले मसला बता दूं कि वैसे तो सारे मराजे सिवाय एक मर्जे एक ऐसे हैं, आयतुल्ला नासिर मकारिम शिराजी, वो कहते हैं कि पैसों वाला मामला इसमें नहीं होना चाहिए, तबर्रुअन पढ़नी चाहिए। क्योंकि एक सवाल इसके अंदर ही आता है कि नमाजें इंसान पढ़ता है कस्दे कुर्बत से, कुर्बतन इलल्लाह, अल्लाह के हुक्म की बजावरी में, तो ये जो इजारे पर नमाज पढ़ रहा है ये तो पैसे के लिए पढ़ रहा है, इसे कब किसी के दादा हुजूर की कजा नमाजों से दिलचस्पी है कि वो अब्बा की और फना के दादा की जो है नमाजें, अपनी नमाजें पढ़ना मुश्किल है, किसी और की नमाजें पढ़ना है 50 साल की, तो ये तो ले ही, इसकी तो नियत ही पैसे लेना है, तो इसमें कुर्बतन इलल्लाह की नियत कैसे मुमकिन है? इस पे बड़ी एक बहस है, बाकायदा एक असूल फिका की बहस है, जिसको दाई अल दाई वगैरह कहा जाता है, दाई दाल अलिफ आयन छोटी है, कि बाज़ औक़ात, बस इसमें एक जुमले में कहूँ, अगरचे बहुत ही मुफस्सिल है ये, कि मसलन इससे ये कहा जाए कि भाई आपको पैसे मिल गए ना, पैसे के लिए अगर तुम पढ़ रहे थे नमाज, इसके एतराज़ का जवाब ये कि अगर ये पैसे के लिए पढ़ रहा था तो उसे कहा जाए पैसे तो तुम मिल गए, अब क्या जरूरत है नमाज पढ़ने की, मत पढ़ो। तो कहेगा नहीं, अल्लाह ने मुझ पर यह वाजिब किया है क्योंकि मैं अजीर बन गया हूं, तो लिहाजा मैं इस नमाज को अदा करूं, तो इसमें नीयत घूम कर कुर्बतन इलल्लाह की तरफ चली जाती है। तो बहरहाल ये अगरचे इसकी बहुत ही, मैंने बहुत मुख्तसर वक्त में, वरना 1.5-2 घंटे का सिर्फ यही मसला है कि इसकी नियत वगैरह जो है, ये दाई अलग दाई वगैरह का मसला वो क्या होता है। अच्छा, अब एक चीज इसमें और, कि इजारे पर एक बीच में ऐसे मसला आ गया तो जिक्र हो जाए कि नमाज वहशत कबर भी इजारे पर पढ़वाई जा सकती। वैसे तो हर शख्स एक मरहूम की एक पढ़ सकता है, लेकिन कुछ रिवायात वगैरह में भी गालिबन शायद इसका तस्करा है कि 40 का कोई अदद मुकम्मल किया जाए, अगरचे वो साबित नहीं, लेकिन फिर भी अगर जितने अफराद भी जाहिर पढ़ें नमाज वहशत कब्र, खुद उनको पढ़ने का सवाब बहुत है और मरहूम के लिए भी बहुत सवाब है, तो कोई शख्स ये भी कर सकता है कि वो इजारे के 40 की 40 मरहूमिन के को इन नमाज वहशत कब्र पढ़ने के पहले से पैसे अलग करके उस तरीके से अलग कर दे जो अभी आपके पहले खिदमत में पेश हुआ, तो इजारे पर नमाज वहशत कब्र भी पढ़वाई जा सकती। अच्छा, अब एक चीज और भी है कि क्या हज अदा करवाना भी बड़े बेटे पर वाजिब है? देखिए, हज अदा करवाना, हज की अदायगी बड़े बेटे के ऊपर वाजिब नहीं है, तो हज करवाना यानी हज की अदायगी ये बड़े बेटे पर वाजिब नहीं होती, सिवाय इसके कि बाप के पास, बाप पे हज वाजिब था और बाप जो है माल भी छोड़कर गया हुआ है, तो बाप फिर इस सूरत में जो है एक वरसा की जिम्मेदारी के माली वाजिबात में के पैसे अलग निकाले जाएं हज के, और फिर बाद में मीरास को तकसीम किया जाए, यानी बाप का हज करवाया जाए उससे। अच्छा, मरहूम बाप के कजा रोजे बड़े बेटे के ऊपर वाजिब होते हैं। अब ये मसला सिर्फ आगा सिस्तानी का और किसी भी मुज्तहिद का नहीं, ये सहूलत। आगा सिस्तानी फरमाते हैं कि मरहूम बाप के कजा रोजे अदा करवाने में, देखिए, या तो कजा रोजे अदा करवाने हैं उसके, या तो बड़ा बेटा खुद अदा करे या किसी से अदा करवाए इजारे वगैरह पर, लेकिन वो उसको एक सहूलत है कि वो ये भी कर सकता है कि मरहूम के कजा रोजे जो है उसमें फी रोजा अगर वो 3 पाव आटा या मसलन दाल चावल छोले गोश्त ये भी शामिल हो सकता है, जो भी उसकी मर्जी हो। फी रोजा 3 पाव किसी भी गरीब नमाजी और दीनदार शिया को दे, तो उसके रोजे, उसका वो रोजा अदा हो जाएगा। यानी जितने भी अब रोजे उसको रखवाने हैं, 3 पाव आटा फी रोजा, यानी एक लिहाज से 1 साल के 25 किलो आटा बनेगा और कजा रोजे 1 साल के अदा हो जाएंगे। चाहे वो बाप ने वो रोजे उजूर की वजह से छोड़े हों या बगैर उजूर के छोड़े, दोनों में ये वाला मसला चल जाएगा। ये नमाजों का मसला नहीं है, नमाजें पढ़नी पड़ेंगी या पढ़वानी होंगी। कजा रोजे में या तो रखे या रखवाए, या ये दोनों नहीं करना चाहता, ये मुश्किल काम लग रहा है, ज्यादा कॉस्टली भी लग रहा है, तो फिर वो आगा सिस्तानी का जो मुकल्लिद है वो ये बात कर सकता है कि वो फी रोजा 3 पाव, यानी एक मुद जिसे कहा जाए। अब वो मुद जो है वो आटा भी हो सकता है, दालें भी हो सकती हैं, चावल भी हो सकते हैं, छोले भी हो सकते हैं, गोश्त भी हो सकते हैं, खाना भी हो सकता है, तो वो दीनदार नमाजी शिया को दे और वो गरीब भी हो, गरीब भी हो। अच्छा, अब मरहूम बाप की हद तक तो ये है, आगा सिस्तानी से ये पूछा गया कि क्या यही वाले रोजे इसी तरह से जो ये सहूलत बड़े बेटे को बाप के लिए, क्या ये माँ के लिए भी वाली सहूलत है, क्या माँ के कजा रोजे भी इसी तरह से अदा करवाए जा सकते हैं? तो उनका जवाब आया कि जी हाँ, माँ के कजा रोजे भी इस तरह से अदा करवाए जा सकते हैं, माँ के कजा रोजे। और इसमें एक सहूलत और भी है कि क्या ये सिर्फ सहूलत बड़े बेटे को है या किसी और अजीज रिश्तेदार भी इसको अदा कर सकता है। मसलन बड़ा बेटा नहीं अदा करना चाह रहा, तो मरहूम का कोई भाई कर ले, मरहूम की बीवी कर ले, मरहूम की कोई बेटी उसकी जगह जो है उसके रोजे इस तरह से आटा वगैरह दे के अदा करवा दे, तो आगा सिस्तानी फरमाते कि जी हाँ, इसकी भी इजाजत है। कोई और रिश्तेदार भी मरहूम के कजा रोजे इस तरह से अदा करवा सकता है। अच्छा, ये वाला जो मसला, बहुत से लोग कहते हैं कि ये मसला आगा सिस्तानी ने कहां पे लिखा है, हालांकि ये मसला जो है वो तौजील मसाइल के अंदर भी मौजूद है, और ये मसला जो है मिनहाजुस सालेहीन में भी है, और अल मसाइल उल मुंतखबा जो आगा सिस्तानी की है उसके अंदर भी ये चीज मौजूद है, और इस सहूलत का उन्होंने जिक्र किया। अच्छा, बाज़ औक़ात जो हमारे गैर शिया मुसलमान भाई हैं उसके ऊपर एतराज करते हैं कि भाई ये क्या है, कहीं कभी ये मसला सुन लेते हैं तो कहते हैं कि क्या इस तरह से कहां से बस आपने ना आटा दे दिया और जो है वो अदा हो गए, या पैसे जो है आपने इस तरह से दे दिए इस अनाज वगैरह के लिए, तो इस तरह से यानी मजाक उड़ाया जाता है। तो आप वाजे तौर पर उनको बता सकते हैं कि ये नमाजें और रोजे दोनों के लिए, जबकि हमारा ये मसला सिर्फ रोजों के लिए, उनके यहाँ नमाजों का भी ये मसला है और रोजों का भी ये मसला है कि मरहूम की तरफ से कजा नमाजें और रोजे के लिए इस तरह से फिदिया अदा किया जाए, पैसे दे के आटा वगैरह दे के, ये मसला फिका उनके अपने अंदर भी मौजूद है। तो बहरहाल, अगर कभी कोई पूछे, कोई एतराज की बात करे, तो मैंने इसके अंदर भी इस तरह से आपकी खिदमत में ये चीज बयान की। तो हमारे बिरादरान ने अहले सुन्नत, उनके यहां भी इस तरह से चीज अदा हो जाती है, अलबत्ता उनके यहां ये वाला फिकही मसला बड़े बेटे के ऊपर वाजिब होने वाला नहीं, बड़े बेटे के ऊपर वाजिब होने वाला नहीं। तो ये भी दिमाग में रहे कि बाप पर रमजान के अलावा जितने भी और जो रोजे होते हैं वो वाजिब नहीं है, मसलन नजर के, कसम के, अहद के, कफारे के, इजारे के, उनकी कजा सिर्फ और सिर्फ माह रमजान के कजा रोजों की कजा बड़े बेटे के ऊपर वाजिब होती, माह रमजान के रोजों की कजा बड़े बेटे के ऊपर वाजिब होती। लेकिन उसके अलावा बाप पे अलग से कोई और बहुत सारे वाजिब रोजे अलग से भी थे तो वो बड़े बेटे के ऊपर वाजिब नहीं होते। अच्छा, ये बस एक रहे दिमाग में कि जिस पर वालिद के कजा नमाज और रोजे हों वो शख्स मुस्तहबी रोजा रख सकता है, यानी उस पर अपने नहीं, जिस पर वालिद के कजा नमाज, अपने कजा नमाजें, नमाजों का मसला तो अलग है, अपने कजा रोजे हों वो मुस्तहबी रोजा नहीं रख सकता है, लेकिन जिस पर वालिद के कजा नमाज और रोजे हों क्या वो मुस्तहबी रोजा रख सकता है? आपका क्या ख्याल है, इसमें रखेगा या नहीं रखेगा? अच्छा, अपने अपने वाजिब नहीं है उसके ऊपर, यानी अपने कजा नमाजें तो उतार दी हैं उसने, अपने कजा रोजे उतार दिए, अपने कजा रोजे उतार दिए हैं, लेकिन वालिद साहब के कजा उसके ऊपर वाजिब है, वो मुस्तहबी रोजा रख सकता है, क्योंकि ये मसला फकत और फकत सिर्फ और सिर्फ अपने रमजान के कजा रोजों का है, अपने रमजान के कजा रोजों का। हत्ता कि ये शख्स जो है इजारे के रोजे भी रख सकता है, अगर रमजान का कजा रोजे हो तब भी इजारे का रोजा रख सकता है। तो बहरहाल एक ये मसला हुआ, और आपने देखा कि बहरहाल सिर्फ वालिद की कजा नमाजें और रोजे के अहकाम ही कितने ज्यादा थे, उसमें कितनी तफसील थी, कितनी बारीकियां थी। तो मसाइल फिका को हमेशा दिमागी जरा आपकी जिमनास्टिक भी हो गई। अब मुझे नहीं पता कि आप लोग इम्तिहान देने के कितने काबिल रहीं जो इसके बाद होने वाला है, लेकिन बहरहाल ये कि इससे कुछ ना कुछ दिमाग में एक ताजगी और तवानाई पैदा हुई होगी, और बेहतर तरीके से इंशाल्लाह आप अपने पेपर दे सकेंगे। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन। برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.